ओम शांति। आप सभी का सभी हमारे महात्मा पुरुष और सभी जो पधारे हैं धार्मिक विंग के सम्मेलन में सबका बहुत बहुत स्वागत है। ब्रह्मा कुमारी की तरफ से और हमारे ग्लोबल हॉस्पिटल परिवार की तरफ से। तो आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं स्ट्रेस फ्री हेल्दी एंड हैप्पी लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफ, अर्थात हमारा तनाव मुक्त जीवन हो। पॉसिबल है क्या तनाव मुक्त होना इस समाज में? आप क्या समझते हैं? आप तो तनाव मुक्त रहते होंगे। आपको भी क्या तनाव होता है? क्या टेंशन कभी होती है? होती है टेंशन क्या? तो हम कैसे तनाव मुक्त रहें और तनाव क्या है वो समझें, और कैसे आज तनाव के कारण हम कितने बीमारियां हमको हो रही हैं मन की भी और तन की भी, उसकी गहराई में समझेंगे। और जो हमने रिसर्च की है उसके बारे में भी समझेंगे, कैसे हमने प्रूव किया कि कैसे हम सचमुच में अगर राजयोग मेडिटेशन करते हैं उसके द्वारा हम सकारात्मक चिंतन पॉजिटिव थिंकिंग की अप्रोच हमें आ जाती है, और जिसके द्वारा हम अपने अंदर के चेंजेस, हमारे हार्मोन्स बदल जाते हैं, हमारा ब्रेन का ईईजी बदल जाता है, हमारी जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स और रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स कैसे बदलती है वो मैं आपको दिखाऊंगा, और इवन हार्ट के ब्लॉकेजेस भी ठीक हो जाते हैं। जो लोगों को हार्ट अटैक होता है ना, फिर एंजियोप्लास्टी बाईपास करते हैं कराते हैं, वो भी ना कराना पड़े, वो भी उसके बगैर भी अगर करा भी लिया है फिर फेल हो गया, फिर दोबारा से यहाँ पर जो हमारे पास आते हैं वो ठीक हो जाएं। और हार्ट की जिनकी हार्ट अटैक आके जिनकी हार्ट की पंपिंग पावर कम हो गई है वो भी दोबारा से हम हार्ट को भी रीजनरेट कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है। तो मैं आपको वो दिखाऊंगा। ये हमारा माउंट आबू का ग्लोबल हॉस्पिटल है, ये जहाँ पर आप शायद एक दो दिन में विजिट करेंगे। तो यहाँ जो हॉस्पिटल में यहाँ पर अप्रैल 95 में आया। इसके पहले मैं दिल्ली में जो एस्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट है ना, दिल्ली में जानते हैं, दिल्ली में एस्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट है, वहाँ पहले कार्यरत था। और वहीं पर रहते हुए मुझे ऐसा, क्योंकि हम लोगों की जो लोगों को हार्ट अटैक होता था, लोगों को हम उनके एंजियोप्लास्टिक एंजियोग्राफी करते थे, फिर बाद में एंजियोप्लास्टिक करके स्टैंड लगा देते थे, या बहुत सारे ब्लॉक होते बाईपास कर देते थे, और उसके बाद भी हम देखते थे किसी को 6 महीने में, किसी को 1 साल में स्टैंड लगाने के बाद, किसी को 3 महीने में ही दोबारा हार्ट अटैक आ जाता था। बाईपास वाले पेशेंट भी कई बार फेल हो जाते थे, तो फिर दोबारा से आते थे, तो हमें कहते थे भी हम कहते थे दोबारा एंजियोग्राफी करेंगे, तो पता लगता था तो उनको वो स्टैंड बंद हो गए हैं या जो ग्राफ्ट लगाए ग्राफ्ट बंद हो गए हैं, तो हम कहते दोबारा से करा लो। तो कई पेशेंट मुझे ये कहते डॉक्टर साहब मुझे हमने अपनी पहली एंजियोप्लास्टी कराई ना तो हमें अपना घर बेचना पड़ा, अब हम क्या बेचें, क्योंकि 40 साल से पहले की उम्र में आना शुरू, 35-36 साल में, उन दिनों 94-95 की बात बता रहा हूँ, तो उस समय लोगों को 35-36-37 साल में ही हार्ट अटैक आने शुरू हुए थे। जो हार्ट अटैक 60-70 की उम्र से पहले नहीं आते थे वो जल्दी उम्र में आने शुरू हुए। अभी तो आप लोग सुनते हो, खबर सुनते होंगे ना कि कैसे यंग एज में हार्ट अटैक आ रहे हैं लोगों को। तो तब मुझे ऐसी प्रेरणा हुई, आप तो सभी जानते हैं कि जब ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मेडिटेशन करते हैं तो हमें क्लियर अवेयरनेस होती है, अर्थात क्लियर विजन, हमारी विजन क्लियर हो जाती है, हमें महसूस, जो हमारे अंदर क्वेश्चंस होते हैं लाइफ में, जैसे मेरा प्रोफेशन तो हार्ट का था, हार्ट के पेशेंट्स का था, तो हमारे मन में था कि भी हार्ट अटैक होते क्यों हैं, क्या कारण है, किताबों में लिखे कारण कुछ और थे किंतु रियल में कारण क्या है। कई लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है यंग एज में आ जाता है, कई लोगों को ओल्ड में भी नहीं आता, कई बार बहुत सारे ब्लॉक हो तो भी हार्ट अटैक नहीं आता, कई लोगों को एक पहली बार हार्ट अटैक होता तो हार्ट काफ़ी हिस्सा मर जाता है हार्ट का। तो मुझे एक दिन क्लियर वॉइस हुई और उसमें परमात्मा से ऐसे टचिंग आई कि ये कारण है हार्ट की बीमारी का, इस कारण से ब्लॉक होते हैं और इस कारण से हार्ट अटैक आता है, और कैसे अगले दिन फिर मुझे क्लियर वॉइस हुई कि कैसे उसको मेडिटेशन के द्वारा ठीक कर सकते हैं। ऐसे और बीमारी को भी, डायबिटीज़ के बारे में, हाई ब्लड प्रेशर के बारे में पता लगा कि ऐसे कौन कौन से कारण मानसिक कारण हैं जिनकी वजह से हमें डायबिटीज़ होती है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, क्योंकि मुख्य कारण है ना हार्ट डिजीज़ के, डायबिटीज़ हाइपरटेंशन, ये कारण है, मुख्य कारण है ना। तो ये भी मुझे क्लियर हुआ, तभी ऐसा रिसर्च प्रोग्राम बनाया। तब डॉक्टर कलाम साहब दिल्ली में थे उस समय, DRDO के डायरेक्टर जनरल थे उस समय, तो तब उनसे किसी साइंटिस्ट ने आके, जो लेक्चर मैंने IIMA की मीटिंग में भी दिया था, तो उन किसी DRDO साइंटिस्ट ने सुना, उन्होंने डॉक्टर कलाम साहब को बताया और डॉक्टर कलाम साहब ने फिर मुझे बुलाया। तो मैं से बात की, कैसे कैसे आप कहते हो कैसे बीमारी ठीक हो सकती है, तो मैंने कैसे ठीक हो सकती है, तो उनका नहीं डॉक्टर गुप्ता से रिसर्च एक प्रोजेक्ट बनाओ और आप अगर रिसर्च करोगे तो मैं आपके साथ हूँ, मेरा पूरा DRDO आपके साथ है। तब रिसर्च प्रोग्राम बनाया गया और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को दिया गया और तब करने के लिए मैं यहाँ पर आ गया। मैं अप्रैल 95 में आया था यहाँ पर, आज से कितने साल पहले, 30 साल पहले। शुरू शुरू में पाँच छः साल के सोच के आया था, फिर यहीं रहे, उसके बाद तो मैं गया ही नहीं वापस, यहीं रह गया। तो ये जो है, ये हॉस्पिटल जहाँ पर मैं आया था, और अभी तो नीचे एक हॉस्पिटल और बन गया है, इसको ग्लोबल हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर, आई सेंटर बोलते हैं, शांतिवन की फुटहिल्स में, इस माउंट आबू के फुटहिल्स में बना हुआ है। अब देखते हैं हम तनाव क्या है, जो आज का विषय है, व्हाट इज स्ट्रेस, तनाव किसे कहते हैं, स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस इज अ रिएक्शन टू चेंज एंड लॉ ऑफ लाइफ इज चेंज। जीवन का नियम क्या है, परिवर्तन, हर समय परिवर्तन हो रहा है, हमारे शरीर में ही परिवर्तन हो रहा है, हमारे मन में ही परिवर्तन हो रहा है, नहीं, हमारे जो घर में जो रहते हैं, हमारे साथी हैं, जहां पर हम मान लो आश्रम में रहते हैं, हमारे साथी साथ कम साथ में सेवा करने वाले भाई बहन हैं, उनके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा है, मौसम में परिवर्तन हो रहा है, देश में परिवर्तन हो रहा है, संबंधों में परिवर्तन हो रहा है, हर समय परिवर्तन हो रहा है, और अगर हम उससे रिएक्शन करते हैं तो उससे तनाव पैदा होता है। आज इसलिए हर एक आदमी जीवन का नियमित तनाव बन गया है। अमीर हो, अमीर को भी तनाव टेंशन है, गरीब को भी टेंशन है, मिडिल क्लास को भी टेंशन है, पढ़े लिखे आदमी को भी टेंशन है, और गरीब अनपढ़ को भी टेंशन है, नहीं है, बूढ़ों को टेंशन है क्या, या बूढ़े टेंशन फ्री है, बूढ़ों को भी टेंशन है और जवानों को भी टेंशन है, बच्चों को भी टेंशन है, नहीं। आज हर आदमी स्ट्रेस में है, क्यों ऐसा है। आज हम देखें, ये डायग्राम बनाया ना मैंने, दिमाग का डायग्राम बनाया, मनुष्य का दिमाग होता ना उसका डायग्राम बनाया। ये देखिए, हमारे दो ब्रेन हैं, ये लेफ्ट ब्रेन है, राइट ब्रेन है। लेफ्ट ब्रेन जो है हमारा लॉजिकल ब्रेन कहते हैं इसको, कि पेड़ से सेब टूटता है तो कहाँ जाएगा, नीचे जाना चाहिए ऊपर जाना चाहिए, क्या समझते हैं, पेड़ से सेब टूटा तो कहाँ जाएगा, ऊपर या नीचे, नीचे जाना चाहिए ना। ये लेफ्ट ब्रेन हमारा कहता है नीचे जाना चाहिए, ठीक है। और राइट ब्रेन क्या कहता है, क्रिएटिव ब्रेन है, इमोशनल ब्रेन है, वो सोचता है, वो कहता है नहीं ऊपर भी जा सकता है। तो जो पुरुष होते हैं ना, उनके अंदर लेफ्ट ब्रेन डोमिनेट होता है, लॉजिकल ब्रेन, वो लॉजिक में विश्वास करते हैं। और स्त्रियां जो होती हैं, बहनें माताएं होती हैं, उनका राइट ब्रेन डोमिनेट होता है, इससे वो ज़्यादा क्रिएटिव होती है, इमोशनल होती है। कहा जाता है जहां से पुरुष का दिमाग जहां तक काम करता है ना, उसके आगे स्त्री का दिमाग काम करता है, है ना, उससे आगे सोचती है वो, इससे दोनों का, दोनों की सोच ही अलग होती है, राइट। आपको पता है बीरबल अकबर की कहानी जानते हो ना, बीरबल बुद्धिमान था क्या, बीरबल बुद्धिमान नहीं था। जब भी अकबर उनके सामने कोई समस्या रखता था, वो हमेशा एक दिन का समय मांगता था उनसे, या तीन दिन का या एक हफ्ते का समय मांगता था। वो जाके अपनी अपनी जो प्रॉब्लम होती थी, जो उसको प्रॉब्लम, वो अपने जाके उसे शेयर करता था अपनी पत्नी से। उसकी पुत्री भी बहुत बुद्धिमान थी, वो सलाह देती थी, जो भी समस्या होगी उसकी सलाह देती थी, और वो जाके तब राज दरबार में सुनाता था। और इसलिए अकबर बुद्धिमान था, उसका नाम इतना, बीरबल इतना बुद्धिमान था। और जिस घर में स्त्री और पुरुष हमेशा आपस में सलाह करके काम करते हैं, उस घर में सदा सुख रहता है। इसलिए पुरुष का काम है स्त्री की सलाह लेवे, और दोनों की सोच से जो सोच होती है ना, वो परफेक्ट सोच होती है, इनकम्प्लीट, अदरवाइज इनकम्प्लीट होती है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कहा जाता है जहां स्त्री की पूजा होती है वहां स्वर्ग होता है, जहां स्त्री को आगे रखा जाता है वहां स्वर्ग है, और जहां स्त्री को पीछे रखा जाता है वो दुनिया कैसी है, नरक है, राइट। तो ये सोच, तो हमारे पास जो ये हायर ब्रेन है, सिर्फ मनुष्यों में हायर ब्रेन है, ये राइट और लेफ्ट है ना। और फरिश्ते जो होते हैं, देवता देवताओं में क्या क्या फर्क है, मनुष्यों और देवताओं में क्या फर्क है, फरिश्ते जो होते हैं उनका राइट और ब्रेन एक ब्रेन इक्वल होता है, राइट ब्रेन लेफ्ट, राइट और लेफ्ट का फंक्शन इक्वल होता है, दोनों बैलेंस होता है, और देवताओं में भी ऐसा होता है। किंतु आज के समय में क्या है, आज के समय में जो पुरुष हैं वो लॉजिकल हैं और स्त्रियां क्या है इमोशनल है, इसे दोनों में प्रॉब्लम है। इस जो पुरुष लॉजिकल है तो क्या है, हर समय में टाइम प्रेशर वर्क प्रेशर में रहता है और बात बात पर गुस्सा आता है उसको, उसके हिसाब से काम नहीं होता था। और स्त्रियां थोड़ी देर में एंजाइटी में रहती हैं और डिप्रेशन में चले जाती हैं, भावुक ज्यादा होती है ना। कि तो हमारे यहाँ ये देखने में आता है राजयोग मेडिटेशन अगर आप करते हैं, एक्चुअली क्या है, दोनों के दोनों सी जैसे होता है ना, सी आदमी भी सी है और औरत भी सी है, और दोनों मिलकर के क्या कोशिश करते हैं, मिलके जीरो बनने की कोशिश करते हैं। जीरो बन सकते हैं कभी, कभी नहीं बन सकते। और राजयोग मेडिटेशन से करने से क्या होता है, अगर पुरुष मेडिटेशन करता है तो वो कंप्लीट जीरो बन जाता है, माना उसका राइट और ब्रेन, राइट ब्रेन लेफ्ट, उसका राइट ब्रेन भी इक्वली डेवलप हो जाता है, उसकी सोच कंप्लीट हो जाती है। और अगर स्त्री मेडिटेशन करती है तो उसका राइट ब्रेन डोमिनेंट है कि तो उसका लेफ्ट भी डेवलप हो जाता है और जीरो बन जाती है। तो क्या हो गया, लक्ष्मी नारायण कैसे कहते हैं, दोनों जीरो हैं, दोनों कंप्लीट हैं, इसलिए वो जीवन साथी हैं, इसे सुखमय समाज है सत्युग सर्वग में, राइट। उनका राज्य है ना सत्य में श्री लक्ष्मी श्री नारायण का, वो कंप्लीट विश्व है कंप्लीट। तो हमें क्या करना पड़े, इसलिए कहते हैं नर क्या करता है, नर श्री नारायण बन जाता है और नारी क्या बन जाती है, श्री लक्ष्मी बन जाती है। नारायण का मतलब क्या है, पूजनीय नर, और नारी लक्ष्मी माना जाए जिससे अच्छे लक्षण हो, जिसके घर को अच्छा करने वाले लक्षण हो, तो श्री लक्ष्मी बन जाती है। तो हमें ये जो है, हमारे पास, हम इंसानों के पास पांच पावर्स हैं। कुछ भी कर्म करने से पहले जब भी हमारे तन में मन में धन में संबंध संपर्क में समाज में वातावरण में कुछ भी परिवर्तन हो, कुछ भी चेंज आए, तो हमें क्या करना चाहिए, पहले ये पांच बातें लगाने के बाद फिर हमें एक्शन कर्म में आना चाहिए। अगर हम ऐसा करें तो हमें कभी भी तनाव हो ही नहीं सकता, और आज सारी सारी बीमारियां मन की और शरीर की सारी सारी किससे पैदा होती है, तनाव से पैदा होती है। इवन एक्सीडेंट भी तनाव से होते हैं, हार्ट अटैक, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, जो भी बीमारियां हैं, इवन बार बार जुकाम होता है तो ये भी तनाव से पैदा होता है, राइट। तो हमें नींद ना आना, डिप्रेशन हो जाना, सब भी बीमारियां से पैदा होती है। तो ये एशिया क्या है, एशिया मतलब इंसान के पास, हमारे पास पांच पावर्स हैं। पहले ए फॉर एनालिसिस, एनालिसिस मतलब विश्लेषण, जब भी कोई समस्या आपके जीवन में आए पहले विश्लेषण कर लो, जमा घटा गुणा भाग करके देख लो मेरा किस में फायदा है। इसलिए भी कहा जाता है ना, कुछ भी हो, जब कुछ होता है तो सोच समझ के बोलना चाहिए, सोच समझ के कर्म करना चाहिए, तुरंत नहीं करना चाहिए, रिएक्शन नहीं करनी चाहिए, एक्शन करना चाहिए। तो एनालिसिस में ना आईक्यू, इसको बोलते हैं आईक्यू माना इंटेलिजेंट क्वेश्चन, अपनी बुद्धि को यूज करो, उसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देख के तब हमें कर्म करना चाहिए, किस में फायदा है। अब खाली पर इंसान खाली अकेला नहीं है समाज में, उसका परिवार भी है, ऐसे लोग हैं जिनसे वो भावनात्मक रूप से कनेक्टेड है, उसकी जो उससे भावनाओं रूप में कनेक्टेड है, भले हम सन्यासी हैं साधु, फिर भी हमारा समाज जहां हम रहते हैं, आश्रम में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं या घर में रहते हैं, कुछ लोग हमसे जुड़े होते हैं, उनकी भावनाएं हमसे जुड़ी होती हैं। तो खाली जब हम डिसीजन लें तो ये ना देखें खाली इसमें मेरा फायदा है, नहीं, जिन लोग जो लोग मुझसे भावनात्मक इमोशनल रूप में जुड़े हैं उन पर उसका क्या असर होगा, इसे बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, उसे बोलते हैं EQ, सिंथेसिस माना जोड़ के देख लो, जहां आप रहते हो उनसे अपने आप को जोड़ के देख लो, जिनके बीच में आप रहते हो, जो मैं करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं उसका असर मेरे परिवार पे क्या पड़ेगा, तो उसे बोलते हैं EQ। तीसरा है I माना इंटेग्रेशन, इंटेग्रेशन माना क्योंकि मनुष्य खाली परिवार नहीं है, समाज भी है, प्रदेश और देश भी है, और सारा विश्व भी है। आज हम जो कुछ भी करते हैं सोशल मीडिया के द्वारा सारे विश्व में फैल जाता है, नहीं फैलता है, थोड़ी देर में सब जगह खबर फैल जाती, नहीं फैलता, होता नहीं होता, अच्छा काम करते उसका भी होता है, बुरे काम का तो बहुत जल्दी फैलता है, आप देखते हो ना टीवी पे खबरें देखते हो कितनी जल्दी वायरल होती है ना, थोड़ी समाचार भी सारे विश्व को प्रभावित कर देता है। तो हमें कुछ भी करें तो हम सोचें इंटेग्रेशन माना सारे समाज पे क्या असर पड़ेगा, या इवन हमारे देश पर, हमारे सारे विश्व पे क्या असर पड़ेगा, उसे कहें इंटेग्रेशन, अर्थात सोशल इंटेलिजेंस या स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, राइट, SQ बोलते हैं इसको। और चौथा होता है मैं सब में सब खुश हो गए, मैं भी खुश हूं, मतलब मुझे भी फायदा हुआ और मेरे परिवार को भी अच्छा हो गया और समाज को भी अच्छा हो गया, विश्व को भी अच्छा हुआ, किंतु एट द एंड ऑफ द डे मेरा क्या हाल है। इसे कहते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन माना कि क्या मैं खुश हूं सब कुछ करने के बाद, हमें हैप्पी, जैसे हम डॉक्टर की लाइफ कैसी होती है, सुबह से उठने से पहले ही फोन आने शुरू हो जाते हैं, सुबह स्नान करते करते भी, सैर करते करते भी, कुछ भी करेंगे, खाना खाते खाते भी फोन आते रहेंगे, खाना भी नहीं खा पाएंगे, कभी खाना छोड़ के भागना पड़ता है, कभी ब्रश करते करते भी फोन आएंगे तो भी पेशेंट सीरियस है तो भागना पड़ता है, लंच भी नहीं कर पाते कई बार, तो कई बार डिनर भी नहीं हो पाता है, रात सोने जाएंगे फिर फोन आने, फिर पेशेंट अचानक सीरियस हो जाते हैं। तो दिन रात हमें क्या होता है, क्या मैं खुश हूं, क्या मैं दूसरों को जो बताता हूं क्या मैं खुद प्रैक्टिस करता हूं, कर पाता हूं। इसे क्या हो रहा है, डॉक्टर्स जो आम पॉपुलेशन के, जो जनरल पॉपुलेशन है समाज के अंदर, उसकी आयु 70 साल है भारत में इसमें जन्म पर, और डॉक्टर्स की एवरेज आयु 60 साल है, 10 साल पहले मर रहे हैं डॉक्टर्स। क्यों मर रहे हैं, दूसरों को सिखा रहे हैं कि तो खुद पहले मर जा रहे हैं, तो क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्रेस उनको है, ब्लड प्रेशर भी ज्यादा होता है, डायबिटीज भी ज्यादा होती है, हार्ट अटैक भी ज्यादा आते हैं, हर बीमारी उनको ज्यादा होती है, मोटापा भी ज्यादा होता है। तो ये जो है आज के समय में ये हो रहा है। और चौथा है, पांचवा है ए माना एडवर्सिटी क्वेश्चन। कुछ कभी कभी उस समाज में कुछ समय ऐसे आते हैं, हर एक के जीवन में आते हैं, जब सारा समाज हमारे खिलाफ हो जाता है, हमसे जाने अनजाने को गलती हो जाती है, किसी या कोई लोगों में बदनाम कर देते हैं तो हम अकेले पड़ जाते हैं। कि तो उस समय अगर भगवान से मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है तो उसको घबराते नहीं है, इसको बोलते हैं वर्टिकल कनेक्शन। दुनिया वालों से कनेक्शन भले खराब हो जाए, कि तो अगर मेरा कनेक्शन भगवान से ठीक है, क्लियर है, लाइन क्लियर है, तो आप घबराएंगे नहीं। जैसे आपने कोविड में देखा, कोरोना जब पॉजिटिव हो गए तो क्या हुआ था याद है, कोरोना पॉजिटिव हो गया, आपको अकेला कोने में डाल दिया गया, या हॉस्पिटल में या घर में रख दिया गया, और फिर उसके कोई भी आपके पास नहीं आया, घर में बच्चे आने से भी डरते थे और युगल वाइफ हस्बैंड भी आने से डरते थे कि मुझे ना हो जाए, और मर गए तो बैग में डाल के और शमशान घाट भेज दिया गया। किंतु पर देखने में क्या आया, कौन बच गए, जो 70-80 साल के भी थे उनको कोविड तो पॉजिटिव हुआ था, साथ में हार्ट की बीमारी भी थी, डायबिटीज भी थी, ब्लड प्रेशर भी था, सांस की तकलीफ भी थी, फेफड़े भी सफेद हो गए, फिर भी बाहर निकल आए, क्योंकि अंदर से पॉजिटिव थे, भगवान से अच्छा कनेक्शन था। और कोई लोग, कई बच्चे ऐसे थे जो 25-30 साल के थे, उनको कोरोना पॉजिटिव हुआ, फेफड़े भी इतने खराब नहीं हुए थे, क्योंकि एंजाइटी और डर बहुत ज्यादा था उनके अंदर, वो मर गए। सुना था आपने ऐसे हुआ ना, क्यों, क्योंकि जब उस समय अगर आप जो देखने में आए, जो इमोशनली इम्यूनिटी अच्छी थी, स्ट्रांग कनेक्शन था, स्पिरिचुअलिटी में विश्वास था, बच गए। तो ये बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा वर्टिकल कनेक्शन हमेशा अच्छा रहे, तो अब सच्चा आदमी जो होता है ना, कभी भी सारा समाज अलग हो जाए तो भी घबराता नहीं। जैसे दिखाते हैं महाभारत में, दिखाते हैं ना पांडवों के साथ कौन था, पांडवों के दादा, पांडवों के चाचा, पांडवों के मामा, और इवन कृष्ण की पूरी सेना अपोजिशन दिखाई ना, कहां पर दिखाई, कौरवों के साथ दिखाई, फिर विजय किसकी हुई, पांडवों की हुई ना। तो ये देखना कि हमारे जीवन में अगर हम सत्य के साथ जुड़े हुए हैं, हमारा स्ट्रांग कनेक्शन है, तो समय, उस समय कोई समय तो बदल जाएगा, वो थोड़ा समय आपका निकल जाएगा, फिर आप वापस स्ट्रांग हो जाएंगे। इसलिए हमेशा कहते हैं नीचे वाले को कनेक्शन, इसको खुश करूं, इसको खुश करूं, इसको खुश करूं, तो कोई खुश नहीं होता है, कि तो उसको खुश जिसने किया, उसके साथ स्ट्रांग कनेक्शन है, तो नीचे वालों को अपने आप ही क्या होता है, अपने आप खुश होना हो, आप खुश रहते हो। मुझे याद है हमारी दादी जी थी, दादी प्रकाशमणि जी, जो पहले चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी उनके साथ काफी समय रहा, उनका पर्सनल फिजिशियन रहा, पर्सनली उनको मैं उनको रोज उनसे मिलना होता था, उनकी तकलीफ वगैरह जो भी होती थी मैं मुझे देखने का सौभाग्य मिलता था। तो दादी जी कहा करती थी, एक दादी जी कभी कभी मुझसे पूछ कह देती थी, तो दादी ने एक दिन मुझे कहा, गुप्ता जी आप जानते हो इंचार्ज किसे कहते हैं? तो मैंने कहा दादी इंचार्ज माना हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जैसे हमारे पास उसमें शांति उसमें माउंट आबू में पांडव भवन में 42 डिपार्टमेंट थे उसमें, तो दादी अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग इंचार्ज होते हैं। तो नहीं दादी ने कहा उसका रियल मीनिंग क्या है? मैंने कहा दादी आप बताइए। तो दादी इंचार्ज माना जो इन रह के अपने आप को उस पावर हाउस से चार्ज करता रहे, उसे बोलते हैं इंचार्ज। पावर हाउस परमात्मा है ना, निरंतर चार्ज करता रहे, आत्मा रूपी बैटरी कमजोर हो जाती है उसको चार्ज करता रहे, अपनी बुद्धि को अपने मन को अपने संस्कारों को उससे सतो प्रधान बनाता रहे, अपनी आंखों को अपने नाक को कान को पांचों कर्मेंद्रियों को मुख को और त्वचा को, ये पांचों जो कर्मेंद्रियां उनको उनमें सातों गुण भरता रहे, सतो प्रधानता पवन पवित्रता भरता रहे, और अपने शरीर के एक कोशिका को भी वो उसको भी चार्ज करता रहे। और जो भी उसके संबंध संपर्क में आते हैं जिनके लिए वो निमित्त है इंचार्ज है, तो उसको भी शांति प्यार, कितना भी आदमी दुखी आए आपके पास उनको भी शांति प्यार खुशी देता रहे, उसे कहते हैं इंचार्ज। अगर हम आंख दिखाते हैं गुस्सा करते हैं तो हम कौन हो गए? उसे इंचार्ज कहेंगे क्या? उसे कहेंगे आउट चार्ज। क्या कहेंगे उसको? आउट चार्ज। तो हमें क्या बनकर रहना? इंचार्ज। आप हम में से हर एक व्यक्ति कम से कम अपने शरीर का तो इंचार्ज है, अपने मन का तो इंचार्ज है, अपनी बुद्धि का तो इंचार्ज है, कम से कम अपने संस्कारों का तो इंचार्ज है, अपनी आदतों का तो इंचार्ज होना चाहिए ना। तो इसलिए निरंतर अगर हम परमात्मा से कनेक्शन ना कर रखें तो हमारी बैटरी चार्ज होती रहती है। तो मैं बता रहा था आपको, जब भी कोई जीवन में कुछ प्रॉब्लम आए तो हमें क्या करना चाहिए? एशिया लगाओ तुरंत, IQ, EQ, SQ, HQ और AQ लगा लो, और तब आप कर्म करो तो आपको कभी भी तनाव नहीं होगा, ये गारंटी है, राइट? और नीचे का जो ब्रेन होता है ना, जो नीचे दिखा है ना, नीचे वाला ब्रेन ब्लैक में दिखाया, ये नीचे वाला ब्लैक वाला जो पोर्शन है इसको लोअर ब्रेन कहते हैं, ये पीछे वाला हिस्सा होता है ना हमारा पीछे वाला, इसको लोअर ब्रेन कहते हैं, पीछे दिमाग के पीछे वाला हिस्सा। इससे हमारी पांच कर्मेंद्रियां, फिर हमारी गर्दन में भी होता है, रीढ़ की हड्डी में भी होता है, पीछे ब्रेन का नीचे हिस्सा जाता है, इससे सारी नर्व सारी बॉडी में जाती है। तो वो जो है ये जो पांच विकार है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये क्या है? पांचों क्या है? रिएक्शंस हैं। जैसे जानवर बंदर है कुछ छेड़ेंगे तो क्या खोंखू करता है, कुत्ता होता है भोंकता है, गधा होता है तो वो अपना कर्म करता है, वो रिएक्शन करता है। इसी तरह से कि तो आदमी क्या करता है, मान लो आदमी का कुछ साथी, उसका साथी है ऑफिस में, उसको गलत करे तो उसको ऑफिस को रिएक्शन करेगा, फिर उसका बॉस अगर उसको बोले, मेरा मालिक उसको बोले कुछ भी कहे, मान लो उसको इवन गंदा भी बोले, यू आर ए फूल, आप बेवकूफ हो, तो क्या कहेगा वो? उससे उल्टा बोलेगा वापस, क्या बोलेगा वो? यस सर करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है मैंने नहीं बोला तो क्या होगा, मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो हमारे पास समझ तो है ना, जानवर के पास समझ नहीं है, हमारे पास समझ है, क्योंकि अगर बंदर को जाए कोई भी सिर्फ कुछ कहे तो खोंखू करेगा, इतना बड़ा आदमी करे तो उसको भी ऐसे करेगा। तो ये डिफरेंस है हमारे अंदर। तो हमारी जो पांच विकार है ना, ये रिएक्शंस है। काम विकार क्या है? काम विकार देखिए, अपनी देह की तरफ या किसी और की देह की तरफ आकर्षण होना, अकल या शकल दोनों पे आकर्षण होती है, अकल की भी आकर्षण होती है, अकल की भी होती है, शकल की भी आकर्षण होती है, दोनों ही काम विकार में आते हैं। ऐसे क्रोध क्या है? मेरी बात को नहीं माना तो ये क्रोध है, मेरे हिसाब से नहीं किया तो क्रोध आता है। ये भी डर से, काम विकार भी डर से पैदा होता है, इनसिक्योरिटी से पैदा होता है, क्रोध भी इनसिक्योरिटी से पैदा होता है, और मोह भी लोभ भी इनसिक्योरिटी, इसकी चीज भी मेरी हो जाए वस्तु, और मोह जो है व्यक्तियों का मोह होता है, जो व्यक्ति मेरे हैं वो मेरे आसपास रहे, और अहंकार जो व्यक्ति और वस्तु आप इकट्ठे कर लेते हैं उसका अहंकार हो जाता है। और इनसे हमारे अंदर दो हमारे अंदर गंदी, इसको बोलते हैं आसुरी स्वभाव बोलते हैं, और इनसे हमारे अंदर 10 आसुरी आदतें पैदा होती हैं। काम विकार से हमारे अंदर, क्योंकि विचार बहुत तेज चलते हैं, थॉट स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है, हमने इसमें ब्रेन की स्टडीज EEG करके देखा, तो हमने देखा कि थॉट स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है, हमारी फ्रीक्वेंसी बहुत फास्ट हो जाती है, और उसके कारण हमारी जो अंदर की एनर्जी है, आत्मा की एनर्जी, अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो उसका ह्रास होता जाता है, तेजी से ह्रास होता है, तो इससे हमारे आलस्य आने लगता है, अलबेलापन। तो काम विकार से दो चीज पैदा होती है, आलस्य और अलबेलापन। क्रोध से क्या पैदा होता है? क्रोध से हमारे अंदर क्या होता है? सिनिसिज्म और हॉस्टिलिटी, अर्थात दोष दर्शन और बदलने की भावना। देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। जैसे एक कॉलेज है, उसमें एक लड़का और लड़की पढ़ते हैं एक ही क्लास में, दोनों का आपस में प्यार हो जाता है, एक दूसरे तरफ अट्रैक्शन हो जाता है। वो लड़का कहता है मुझे इसी लड़की से शादी करूंगा, और लड़की कहती है मुझे इससे शादी कर, माता पिता नहीं चाहते, क्योंकि लड़का कहता है इस लड़की में बहुत गुण है, और लड़की कहती है इस लड़के में बहुत गुण है, इसके बगैर मैं रह नहीं सकती, मैं इससे शादी नहीं तो कुंवारी रहूंगी। माता पिता उसकी शादी कर देते हैं, मान लीजिए वो कहते हैं हम हंसों का जोड़ा है, कहते हैं हंसों का जोड़ा है हम आपस में, अब उनकी शादी कर दो। मान लीजिए 3 महीने बाद पूछो अभी क्या हाल है, क्या होता है? पीछे वाले बताओ क्या होता है? अभी एक दूसरे गुण देखते थे, 3 महीने के बाद क्या होता है? अब उनके बाद आप सुनते हो ना, खबरों में सुनते होंगे ना, लव मैरिज होती है ना, फिर क्या होता है? वही लड़का क्या करता है? वही लड़का कहता है इस लड़की में इतने अवगुण है, मैं तो गलती हो गई बहुत इससे शादी करके, मैं इससे रह ही नहीं सकता हूं। और लड़की क्या कहती है? इसमें लड़के में तो बहुत अवगुण है, मैं इससे तो नहीं रह सकती हूं। कारण क्या हुआ? जब तक वो इंडिविजुअल्स थे, एक दूसरे गुण देखते थे। एक हंस होता है ना, हंस के सामने बहुत सारे कंकड़ पड़े हैं, बीच में 2 मोती पड़े हैं, उसको मोती दिखाई देते हैं, कंकड़ नजर नहीं आते। एक बगला होता है, बगला भी सफेद होता है, उसके सामने बहुत सारे मोती पड़े हों, बीच में 2 कीड़े पड़े हों, उसको मोती नजर नहीं आते, कीड़े दिखाई देते। तो हम भी जब अपने आप में रहते हैं ना, सोल कॉन्शियस रहते हैं, तो हम सबके में गुण दिखाई देते हैं। अच्छे पुरुष जो सज्जन पुरुष होते हैं, उनके एक दूसरे के गुणों में व्यवहार करते हैं। और बाकी जब मनुष्य जब जैसे शादी हुई, वो रोल कॉन्शियस बने, पति पत्नी बने, काम विकार में गए, तो एकदम से क्या पैदा होता है? बगड़े बन जाते हैं। तो उनको क्या होता है वही, किंतु अब उनको उनके अवगुण दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, कीड़े दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, लड़की को लड़के में और लड़की को लड़के में। वही होने के बाद उनके साथ रहना मुश्किल लगता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं सिनिसिज्म, सिनिकल बिहेवियर, फाइंडिंग फॉल्ट विद अदर्स, दूसरों में अवगुण देखना। और यही सबसे बड़ा कारण है समाज में आज घर घर में कलेश है, घर घर में झगड़ा है। पति पत्नी में अवगुण देखती है, पत्नी पति में अवगुण देखता है, माँ बाप बच्चों में देखते हैं, बच्चे माँ बाप में देखते हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज में देखता है, एम्प्लॉयज एम्प्लॉयर में देखते हैं। ये सबसे बड़ा कारण आज के कलेश का, सिनिकल बिहेवियर, क्रोध से पैदा होता है। राइट, हमारे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। क्रोध कभी तभी आता है जब हमारे हिसाब से मेरी बात माननी चाहिए। राइट, और दूसरा है रिवेंजफुल बिहेवियर, हॉस्टाइल बिहेवियर। हॉस्टाइल माने जब कोई व्यक्ति अपने को मान लीजिए गुस्सा कर रहा है, तो हमें उस पर रहम आना चाहिए, गुस्सा आना चाहिए? बोलिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने को तेल डाल ऊपर केरोसिन ऑयल डाल के तेल डाल के जला रहा है अपने आप को, तो उस पर रहम आना चाहिए, गुस्सा आना चाहिए? या उसको तेल डालते देख के मैं भी अपने ऊपर तेल डाल के जलाना शुरू कर दूं अपने आप को? क्रोध ऐसी चीज है, हम अपने आप को जला रहे हैं, पूरा एक एक सेल हमारी जल रही है, ऐसे हार्मोन ऐसे केमिकल हम जल रहे हैं पूरी तरह से। और उसको देख के मैं भी गुस्सा करूं तो ऐसा ही है जैसे कि हमने भी उसको देख के अपने ऊपर तेल डाल दिया, जलाना शुरू कर दिया। जबकि ऐसे व्यक्ति पर रहम करना चाहिए ना, तो इसको बोलते हैं रिवेंज। अगर मुझे कोई क्रोध करता है तो मुझे उसके प्रति क्या होना चाहिए? रहम आना चाहिए। हम इसकी बजाय बदलने की भावना रखते हैं, तो जब तक उसको माफ नहीं करोगे आपके अंदर डैमेज होता रहेगा। फिर है लोभ। लोभ से दो चीज पैदा होती है, शक और अनुमान। भाई भाई में भी शक अनुमान हो जाता है ना, भाई भाई में जब शादी होने के बाद लोभ हो जाता है ना, तो क्या होता है? दूसरे पर विश्वास खत्म हो जाता है ना, संशय बुद्धि बन जाते हैं, और मोह से चिंता और भय पैदा होती है। ये हमारी निच आदत बन जाती है। और ईगो अहंकार से टाइप ए बिहेवियर, माना टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, मेरे हिसाब से काम होना चाहिए, ये आदत बन जाती है। और फिर जेलसी, ईर्ष्या द्वेष की आदत पड़ जाती है, कंपटीशन कंपैरिजन की आदत पड़ जाती है। तो 10 हमारी आदतें बन जाती हैं, जिसके कारण ये आज का आदमी कहने को इंसान है, सूरत इंसान की है, पर सीरत कैसी हो गई? बंदर जैसी हो गई। कहने को हम इंसान है, किंतु आज सबके सब काम क्रोध लोमो अहंकार से पीड़ित है, आलस्य अलबेलेपन से पीड़ित है, दोष दर्शन बदलने की भावना से पीड़ित है, शक अनुमान से पीड़ित है, चिंता भय से पीड़ित है, ये आदत कितनी खराब पड़ गई है, ना चाहते भी इसके वश में है। अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, सब पढ़े लिखे अनपढ़, सब इसी कैटेगरी में आते हैं। जल्दबाजी से पीड़ित हैं, ईर्ष्या द्वेष से पीड़ित हैं, ये इसी कारण हम बीमार होते हैं, यही कारण है बीमारी, यही तनाव है, यही स्ट्रेस है। किंतु कब ईर्ष्या कब लगेगा? जब अपने को आत्मा समझ के परमात्मा पिता के साथ कंबाइंड रहते हैं, जब आत्मा समझ के अपने को आत्मा निश्चित निश्चय करते हुए परमात्मा पिता से कंबाइंड रहेंगे, सर्व संबंधों की महीन सार वाली याद से, कहते हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, आरती में तो गाते हैं पर रियल में उसे माता पिता से उस संबंध से उसे जीते हैं उसको, अगर उससे हम कंबाइंड रहे तो ऑटोमेटिक हमारा हर कर्म में ईर्ष्या लगना शुरू हो जाता है। कभी तनाव होगा ही नहीं, आपको गारंटी है, कभी भी तनाव नहीं होगा। कोई मर भी जाए ना तो भी तनाव नहीं होगा, अपना मरने का समय आ जाए तो भी तनाव नहीं होगा, तो भी खुशी खुशी से ही छोड़ जाएंगे। मरना तो शाश्वत नहीं है मैं संसार का, जो पैदा हुआ उसे जाना ही है, पर उससे डरना किस बात का है, राइट? आप इस आप करके देखिए, ये राजयोग मेडिटेशन से हमने भी देखा, मैं तो एज ए डॉक्टर मैंने देखा, हमारी लाइफ बड़ी स्ट्रेसफुल होती थी। मैं दिल्ली एम्स में था तब मैं और मेरी वाइफ एक दिन हम शाम को फिल्म देखने जा रहे थे, बहुत कम टाइम मिलता था, सैटरडे सेकंड सैटरडे हाफ डे होता था, तो रास्ते में एक ब्रह्मा कुमारी सेंटर था, तो मेरी जो युगल थी वाइफ थी उसने कहा देखो यहाँ पर लिखा है गेटवे टू हेवन, तो मैंने कहा मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ नहीं जाना, वो तो गेटवे टू हेल है, जहाँ मुझे लेके जा रहे वो तो नरक में लेके जा रहे हो, मुझे यहाँ जाना है। और जब से हम अंदर गए उस दिन से आप अंदर ही हैं, कभी बाहर आए नहीं। समझ आ गई कि मैं कौन हूं, आत्मा कैसे शरीर को चलाती है, आत्मा के साथ चैतन्य आदमी ऊर्जाएं मन के माध्यम विचारों भावनाओं के माध्यम से आत्मा शरीर को चलाती है, और आत्मा की बैटरी कमजोर हो जाती है सातवें एनर्जी, तो मन में भी परेशानी शरीर में भी बीमारियां आने लगती हैं, और पावर हाउस एक ही है परमात्मा, परमपिता परमात्मा, उससे जब अपने सर्व संबंधों की महीन सार वाली याद से उसको याद करते हैं, उसे जुड़ जाते हैं, तो हमारे अंदर वो बैटरी चार्ज होने लगती है। इसे हर धर्म का व्यक्ति, हिंदू हो मुसलमान हो सिख ईसाई कोई भी हो, उसको याद जरूर करता है, किसी रूप में याद करे कि तो याद जरूर करता है, उससे ही बैटरी चार्ज होती है, और उससे हमारी टीम हमारा मन पॉजिटिव होता है, भावनाएं शुद्ध हो जाती हैं, उससे फिर हमारा शरीर भी और मन भी स्वस्थ होने लगता है। तो ये हमें वहां उस दिन समझ में आया था, और जिस दिन समझ में आया 86 की बात है, अगस्त का ही महीना था, यही महीना था जिस महीने में हम आपसे, और 24 अगस्त था, वो दिन 24 अगस्त का था जिस दिन हम उस सेंटर में गए थे, और साउथ एक्सटेंशन दिल्ली में था वो सेंटर, क्योंकि एम्स में काम करते हैं तो वहाँ से हमें क्रॉस करके जा रहे थे। तो वो दिन और आज का दिन है, कभी भी मैंने ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे वाला मेडिटेशन कभी मिस नहीं किया, हम 3:30 उठते रहे, समझ आ गए कि ये समय आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने का समय है। और जो हमारे सेंटर्स पे ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे मुरली होती है ना, 7 से 8 मुरली होती है, उस दिन से मैंने कभी मुरली मिस नहीं की। परमात्मा के महावाक्य हैं जिससे मन पॉजिटिव होता है, टीम हमारी पॉजिटिव हो जाती है, जिस दिन समझ आ गया तब से मैंने कोई मिस नहीं किया। और सोने के पहले एक बार समय 10 बजे सो जाना, सोने के पहले एक लेटर लिख के परमात्मा के नाम, सुबह से लेकर रात तक जो कुछ भी मेरे मन में आया गलत चीज, जो भी मुझसे जाने अनजाने हो गया, तो उसको लिख देना, लिख के साइन करके भगवान को सरेंडर करके फाड़ के डस्टबिन में डाल देना और फिर सो जाना। 3 बातें उसने मुझे समझ आई थी और तीनों बातों को करना शुरू किया, और आज तक कर रहा हूं रेगुलर 40 साल से है। तो हमें क्या करना है, याद रहे, अगर हमारे ईर्ष्या हमको लगाना है, अगर सचमुच में इंसान बनना है, इंसान कहलाना है, देवी देवता जैसे हमारा जीवन हो ऐसा बनना है, तो हमें क्या करना पड़े, निरंतर अपने को अपने सत्य को समझ के उस परम सत्य परमात्मा से कंबाइंड रहना। तो एक बहुत सुंदर फॉर्मूला है तनाव का, एक और, स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर्स डिवाइड बाय कोपिंग एबिलिटी और इनर स्ट्रेंथ। जब जब ये रेशियो 1 से अधिक होता है तो हमें तनाव होता है, तो हमें स्ट्रेस होती है। प्रेशर्स माना समस्याएं, प्रेशर्स आपके अंदर के भी हो सकते हैं और बाहर के भी हो सकते हैं, और वो कई बार ऐसे प्रेशर्स होते हैं जिनको बदल नहीं सकते हैं, किंतु आत्मिक शक्ति कितनी बढ़ा सकते हो आप, इनर स्ट्रेंथ कितनी बढ़ा सकते, जितनी चाहो उतनी बढ़ा सकते हो। आपको कभी भी क्या हुआ, कभी भी तनाव नहीं हो सकता। हमारे महात्मा जन बैठे हैं, देखो एक आप जब तपस्या करते हैं, जब आप भगवान से कनेक्ट होता है, भले हम पहाड़ पे बैठे हैं, टेम्परेचर भी माइनस में है, ठंडी बहुत पड़ रही है, वहाँ बिच्छू भी हैं, सांप भी हैं, शेर भी है, भालू भी है, खाने पीने को भी कुछ नहीं है, तो भी जब आत्मा परमात्मा के प्यार में तल्लीन हो जाती है, कितना चेहरे पर अतिंद्रिय सुख आनंद की अनुभूति आती नहीं आती, चेहरा चमक जाता नहीं चमक जाता, आनंद आ रहा होता नहीं होता, क्योंकि क्या उसको प्रेशर नहीं है, क्या खाने का प्रेशर नहीं है, उसको खाना भी चाहिए, सोने को भी चाहिए, पीने को भी चाहिए, सब कुछ चाहिए ना, उसके बाद कुछ भी नहीं है, फिर भी क्यों मुस्कुरा रहा है, क्या पागल है क्या वो, सांप बिच्छू का भी डर है, क्यों, तो आज का एक आदमी एक एयर कंडीशन कमरे में बैठा है, उसके पास मोबाइल है, अचानक से उसको फोन बजता है, एक फोन आया, इनकम टैक्स वाला का फोन आ गया, ये कोई ऐसा बात है कि कोई अचानक ऐसी खबर आई जो खराब खबर है, एकदम पसीने पसीने हो जाता है, उसके पास क्या क्या, उसके पास प्रेशर तो कुछ भी नहीं, ज्यादा प्रेशर नहीं, उसके पास हर चीज है, पैसा भी बहुत है, साधन भी बहुत है, तो भी अंदर से वो टेंशन में क्यों आ रहा है, क्योंकि उसके पास आत्मिक शक्ति नहीं है, अंदर सहनशीलता नहीं है उसके अंदर, उसके पास सहनशीलता है वो कैसे भी वातावरण में रहकर खुश है, राइट। तो हमें क्या करना है, आत्मिक शक्ति बढ़ाओ तो कभी तनाव आएगा ही नहीं। अब देखो, एक होती है यू स्ट्रेस, यू स्ट्रेस कब होती है, जब आत्मिक शक्ति ज्यादा है तो प्रेशर, कितना भी प्रेशर आपके लिए चैलेंज, वो चैलेंज है, तूफान भी तोहफा बन जाता है, तूफान भी तोहफा बन, और प्रैक्टिकल में होता है, मैंने तो अपने जीवन में देखा है, मैं आज पिछले 28 साल से लगभग हार्ट के पेशेंट्स का हम इलाज कर रहे हैं बिना ऑपरेशन के, है ना, राजयोग मेडिटेशन जिसको बोलते हैं 3D हेल्थ केयर, राजयोग मेडिटेटिव लाइफस्टाइल, लोग एंजियोग्राफी करा के आते हैं, कैसे कैसे कंडीशन में लोग आते हैं और कैसे वो ठीक हो जाते हैं, पांचवें दिन तो डांस कर लेते हैं एक घंटा, जो 50 मिनट चल नहीं सकते, कैसे, आत्मिक शक्ति बढ़ने से, जो चलने से भी डरते थे, अभी मरा वाली फीलिंग थी, सांस फूलता था, वो जब आत्मिक शक्ति 5 दिन बढ़ जाती है उनकी, तो उनको हार्ट का दर्द भी खत्म, घबराहट भी खत्म, सांस फूलना भी खत्म, और ताकत आ जाती है। डायबिटीज 5 दिन में बढ़िया, 5 दिन में जब 370-350 खाली पेट डायबिटीज शुगर रहती थी, वो तीसरे पांचवें दिन 120 हो जाती है, 110 हो जाती है, बिना किसी मेडिसिन, बिना किसी एडिशनल मेडिसिन देने के, कैसे, आत्मिक शक्ति बढ़ती है, अंदर से वो हार्मोन्स बदलते हैं, खुशी वाले हार्मोन, आनंद वाले हार्मोन निकलते हैं, तो अपने आप ही अपनी इंसुलिन काम करना शुरू कर देती है, जैसे जब हम आजाद हुए थे ना, जब 1947 में $1 ₹1 के बराबर था, $1.2 के बराबर था, डॉलर रुपए की कीमत सेम थी, आज कितना है, $1 इज इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज, 85 रुपीज, 86 रुपीज, ऐसा ना, तो ऐसे ही हमारी जो इंसुलिन निकलती है ना पेंक्रिया से, तो जब हम स्ट्रेस फ्री होते हैं तो हमारी इंसुलिन डॉलर की तरह काम करती है, और जब टेंशन में रहते हैं तो क्या होता है, हमारी अपनी इंसुलिन क्या करती है, वो ₹1 के बराबर हो जाती है ना, $1 1 रुपये, ₹85 के बराबर हो गया $1, तो हमारी इंसुलिन काम ही नहीं करती है, जैसे आप तनाव मुक्त होंगे तो क्या होगा, आपकी इंसुलिन इफेक्टिव हो जाती है, तो बाहर की इंसुलिन छूट जाती है, गोलियां भी धीरे धीरे कम हो जाएंगी, खत्म हो जाती है, और डायबिटीज खत्म हो जाती है, तो ये आपके अपने अंदर क्या वंडरफुल मैकेनिज्म है आपकी बॉडी में, इतने सालों की डायबिटीज खत्म हो जाती है, 50-60-70 यूनिट 80 यूनिट इंसुलिन लेने के बाद शुगर 350 आ रही है, क्यों आ रही है, क्योंकि आपकी इंसुलिन आपकी बॉडी में काम ही नहीं करती, ना अंदर की ना बाहर की, तो ये मैकेनिज्म वंडरफुल मैकेनिज्म है, तो यू स्ट्रेस माना कोई भी प्रॉब्लम आपके लिए चैलेंज बन जाएगी, ठीक हो जाएगी, मतलब आपके लिए उसको तूफान तोहफा बन जाएगा, अनुभव की अथॉरिटी बन जाएंगे आप, और डिस्ट्रेस किसे कहते हैं, जब आपकी आत्मिक शक्ति बहुत थोड़ी सी है तो छोटा सा प्रेशर भी आपके लिए बहुत बड़ी डिस्ट्रेस बन जाता है, परेशानी बन जाता है, थोड़ी समस्या भी आपके लिए बहुत बड़ी बन जाती है, राइट। तो अब जैसे प्रेशर कौन से होते हैं, एक तो इंटरनल प्रेशर हो सकते हैं मन के, आप बचपन से बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत इमोशनल हैं, आप बहुत जल्दबाजी करते हैं, बहुत गुस्सा आपके नाक पे रहता है, बहुत जल्दी गुस्सा आता है, अपने मन की बातें शेयर नहीं कर पाते हैं, किसी को कह नहीं पाते हैं, राइट। आप सिनिकल हैं, आपके अंदर दूसरों के अवगुण देखने की आदत पड़ गई है, तो ये हमारे अंदर के नेचर है, एकदम तो बदल नहीं सकते हैं, बाहर के अंदर जो मन के बॉडी की क्या है, आपको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, घुटने खराब है, कमर की हड्डी खराब है, ये आपका, ये भी अंदर का प्रेशर है, बाहर के प्रेशर क्या है, मान लो आप घर में आपकी पति पत्नी की नहीं बनती है, बच्चों से आपकी नहीं बनती है, और जहां काम करते हैं ऑफिस में वहां आपके बॉस से नहीं बनती है, ट्रैफिक बहुत है, रोज जाना होता है, एक घंटा ट्रैवल करके जाना होता है ऑफिस में, अपने शॉप पर, अपने क्लिनिक पर जाना होता है, या आपकी फाइनेंशियल प्रेशर, खर्चे जा रहे हैं और कमाई कम है, कोर्ट केस चल रहा है, लीगल प्रेशर है, पॉलिटिकल प्रेशर है ना, लीगल आतंकवाद चल रहा है कि देश में लड़ाई हो रही है आपस में, तो ये सब क्या है, ये प्रेशर्स हैं, बाहर के प्रेशर, इनको बदल नहीं सकते, तुरंत नहीं बदल सकते, टाइम लगेगा। क्योंकि एक चीज आप बदल सकते हो जो आपके हाथ में, वो क्या है, अपनी आत्मिक शक्ति बदल सकते हो। हम ये क्यों बात कर रहे हैं, स्ट्रेस फ्री हेल्दी लाइफ की क्यों बात कर रहे हैं, आज का एक सर्वे है 20 साल से ऊपर का लोगों का, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता और चेन्नई का, ये बड़ी बड़ी सिटीज है ना भारत की, 20 साल से ऊपर के लोगों का, उनका हमने क्या क्या उसको क्या सर्वे में क्या पाया, 2015 का सर्वे है, उसमें हमने उसका क्या क्या किया, बीपी टेस्ट किया गया, ब्लड प्रेशर टेस्ट किया, शुगर टेस्ट की, ECG किया और वेट चेक किया गया, चार बातें चेक की गई, बाकी एक फॉर्म भरवा लिया गया। तो क्या पता लगा, हर 100 में से 30 लोगों को हाई ब्लड प्रेशर था, 10 साल पहले की बात है, 100 में से 14 लोगों का ECG खराब था, हार्ट अटैक आ चुका था, 100 में से 10 लोगों को डायबिटीज थी, 100 में से 40% लोग मोटे थे। आप में से है किसी को हाई ब्लड प्रेशर, हाथ उठाओ, इनको हाई बीपी हाई रहता है, जिनको डायबिटीज है वो हाथ उठाओ, शुगर रहती है हाई, हाई शुगर रहती है, नीचे कर लो, जिनको मोटे हैं, जो अपने को मोटा समझते हैं, हाथ उठाओ, जिनको जिनको हार्ट अटैक आ चुका है वो हाथ उठाए, इनको हार्ट अटैक आ चुका है, नीचे कर लो। तो सांस की तकलीफ 10% को है, एसिडिटी की बीमारी, गला सूखना, छाती में जलन होना, सिर में भारीपन होना, गर्दन में भारीपन होना है ना, और खून में ऐसे अजीब सी फीलिंग आना, हाथ पैरों में भी अजीब सी फीलिंग आना, पेट में गैस बनना, ये एसिडिटी की निशानी है, GERD कहते हैं इसको, हर तीसरे आदमी को है और बढ़ती जा रही है बीमारी। इसका मेन कारण मन ही है, क्योंकि जो वाल्व होता है ना यहाँ पे, वो लूज हो जाता है, उससे एसिड लीक कर ऊपर ऊपर जाता है ना? तो हड्डियों की प्रॉब्लम 20% लोगों को है, और हमारी जो बहनें माताएं हैं 50 साल की उम्र के बाद, उनको उनको तो लगभग सबको ही है, हड्डियां खोखली हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है ना। स्किन प्रॉब्लम 10% लोगों को है, आंख नाक कान गले की प्रॉब्लम, सफेद मोतिया, काला मोतिया, गले की प्रॉब्लम, कान की प्रॉब्लम, नाक की प्रॉब्लम, कान की प्रॉब्लम, 100 में से 10 लोगों को है। कैंसर, कोई ना कोई कैंसर बॉडी किसी पार्ट में भी कैंसर, 100 में से 5 लोगों को है। कोई ना कोई हेडेक, माइग्रेन या कोई भी दूसरा हेडेक, टेंशन हेडेक, 10% लोगों को है। इन्फेक्शन, गले का इन्फेक्शन, नाक का इन्फेक्शन, यूरिन में इन्फेक्शन, फेफड़ों में इन्फेक्शन, पेट में इन्फेक्शन, कोई ना कोई इन्फेक्शन है, राइट। और हार्मोन्स, थायराइड की बीमारी जैसे है, 100 में से 5 लोगों को है। तो ये मोटी मोटी बीमारियां लिखी है मैंने, ये 100 लोगों को 200 बीमारियां हैं। आप भी अपने अंदर देखेंगे तो आपको 2 बीमारी मिल जाएंगे, एवरेज 2 बीमारी सबको मिल जाएंगी। और कहीं कहते हैं भाग्यशाली लोग हैं, इनको 5-5 भी हैं। तो जो जो बीमारी, डॉक्टर बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, बीमारी कम हो रही, ज्यादा हो रही है, ज्यादा हो रही, कम हो रही है? डॉक्टर हॉस्पिटल बढ़े तो बीमारी कम होनी चाहिए थे ना, और ही बढ़ रही। मन की बीमारियां क्या है, देखो ये मन की बीमारियां, टाइप ए बिहेवियर, जल्दबाजी, जो मैंने बताया ना, ईगो के कारण पैदा होती है, सिनिसिज्म, हॉस्टिलिटी, क्रोध से पैदा होती है, लेजीनेस, फियर, डर। बीमारी शब्द कहां से आया, डर से आया, बी माना डर, मारी माना बने रहना, अटैचमेंट, मोह, ईगो, अहंकार, लस्ट, ग्रीड, लोभ, एंगर, गुस्सा करना कोई नहीं चाहता पर गुस्सा करते सब है, जो गुस्सा कभी नहीं करता हाथ उठाए, जो कभी गुस्सा नहीं करता, जो कभी गुस्सा नहीं आता, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लोग हैं, 8 लोग कभी गुस्सा नहीं करते, पर उनका भी कंफर्म करना पड़ेगा उनके साथियों से ना, क्योंकि मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं ना, मैं हमेशा कहता हूँ अपनी वाइफ को या हस्बैंड बीमार है तो वाइफ को लेके आना, वाइफ बीमार है तो हस्बैंड को लेके आना, क्योंकि दोनों मिलजुल के बीमारी पैदा करते हैं। तो मैं कई बार कहता हूँ एक पेशेंट के एंजियोग्राफी भी देखता हूँ कि आप कितने सारे, मैंने कहा 8 ब्लॉक हैं तुम्हारे, तो 8 जगह आर्टरीज ब्लॉक हैं, इतने सारे ब्लॉक कैसे बनाए, बहुत गुस्सा करते हो क्या? नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो कभी गुस्सा नहीं करता। उसकी वाइफ तुरंत बोलेगी, डॉक्टर साहब इसके नाक पे गुस्सा रहता है ना, अब वो गुस्सा नहीं करता, वो उसको लगता है मैं गुस्सा नहीं करता हूँ, तो उसकी वाइफ बताती बहुत गुस्सा करते हैं, उनको पता ही नहीं, गुस्सा करने वाले को पता ही नहीं होता मैं गुस्सा करता भी हूं, पर जिन पे करते हैं उनको पता लगता है, राइट। तो ये भी ध्यान करने की बात है, क्योंकि एक बार गुस्सा करते 3 दिन तक हमारी आर्टरीज ब्लॉक होती रहती है, 3 दिन तक। एक बार गुस्सा करने में साढ़े तीन गुना अधिक चांस होता है हार्ट अटैक आने का, और तीन दिन में दोबारा कर लिया तो फिर 6 गुना चांस हो गया। आज जो हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं रात रात में लेट लेटे सुते सुते हार्ट अटैक, चलते फिरते हार्ट अटैक आ रहे हैं, उसका बहुत बड़ा कारण क्रोध है, राइट। एंजाइटी चिंता सबके अंदर है, चिंता कहते हैं चिंता जैसा कोई मर्ज नहीं है। और डिप्रेशन, आज हर चौथे आदमी को डिप्रेशन हो गया है, 10% लोग तो गोली खाते हैं, इंसोमनिया नींद नहीं आती लोगों को, ये एक बीमारी। तो इसमें से 6 बीमारी सबको फ्री में है, सबके पास है 6 बीमारी, चेक कर लेना, 2 शरीर की और 6 मन की, है ना, भरपूर भंडारे हैं कि नहीं। और ये समाज की हालत है, हेट्रेड, जेलसी, कंपटीशन, है ना, रेप्स, मर्डर्स, डकैतीज, थेफ्ट्स, आज सब जगह इतनी रैम्पेंट हो गई, समाज सिक्योर नहीं है, कोई आदमी अपने आप को सिक्योर महसूस नहीं करता है, है ना। आज स्पिरिचुअल हेल्थ कैसी है, आइडेंटिटी क्राइसिस, सब लड़ रहे हैं आपस में, पति कहते हैं मैं समझदार, पत्नी कहती है मैं समझदार, बच्चे कहते हैं हम समझदार, माँ बाप कहते हैं हम समझदार, होता नहीं होता, बच्चे क्या बोलते हैं माँ बाप को, तुमको कुछ समझ नहीं है, तुम पुराने जमाने के हो, हमको पता है, और माँ बाप क्या कहते हैं तुम्हें कुछ अनुभव नहीं है, हमें पता है। हर एक आदमी इसी में लड़ रहे हैं आपस में, और कम्युनल राइट्स हो रहे हैं, धर्म के नाम पे झगड़े और आतंकवाद, क्या इलाज है इनका बताओ, कोई इलाज है इनका? यस, नर्सरी क्लास में पढ़ाते हैं ना बच्चों को, ABCD पढ़ाते हैं, A फॉर एप्पल, B फॉर बैट, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, इसकी बजाय उनको पढ़ाए हम A फॉर आत्मा, क्या पढ़ाए, A फॉर आत्मा, तो कब से उनकी बुद्धि तो जाएगी कि मैं ये दे नहीं, इस दे को चलाने वाले अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा, मैं 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जा का पुंज हूं, और मैं आत्मा मन के विचारों के माध्यम से मैं शरीर को पोषित करती हूं। बी माना बाबा भी कह सकते हो, परमात्मा भी कह सकते हो, भोलानाथ कहते हैं ना, तो परमात्मा 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जा का पावर हाउस है, और उससे मैं, वो मेरा पिता है, और सी फो कनेक्शन माना संबंध, मेरा सर्व संबंध उसके साथ है, बैटरी वहां से चार्ज होती है, और दुनिया में संबंध नहीं है, बंधन है, कोई भी संबंध है क्या, बंधन है, फर्ज है, हमारी ड्यूटी है अपने पति, अपने मां बाप के प्रति, पति पत्नी के प्रति, समाज के प्रति, वो ड्यूटी है, फर्ज है, संबंध नहीं है, बस बैटरी सब एक से चार्ज होती है, बाकी सबके सब हमारी बैटरी डिस्चार्ज करने वाले, चार्ज करने वाले, कोई हमारी आत्मा की बैटरी चार्ज कर सकता है? हमें कुछ शांति देता है? शांति ले लेते हैं, भंग कर देते हैं, है ना, सच्चा स्नेह देता है, खुशी देता है, कोई हमें खुशी नहीं दे सकता है, खुशी अंदर की चीज है, राइट। तो ये समझने की बात है, तो ये अगर सिखा दें, सी फॉर कनेक्शन, डी फॉर ड्रामा, ड्रामा माना संसार रूपी नाटक में हर आत्मा एक्टर है, और आत्मा अपने अभी तक उसके साथ जो कुछ हुआ है या जो हो रहा है वो अपने किए कर्मों का फल है। मान लीजिए मैंने बेर का पेड़ बोया अभी, और बेर इसमें लगेंगे, अगर मैं 4 धाम की यात्रा कर लूं, अमरनाथ जाके घूम के आ जाऊं, और मैं भगवान को, भगवान मेरे बेर के पेड़ पे आम लगा देगा, लगा सकता है बताओ, बताइए आप, बताइए लगा सकता है आम? तो जो कर्म किया उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा, उसको कोई माफ नहीं कर सकता है, कोई पूजा पाठ तपस्या यज्ञ तपस्या उसको ठीक नहीं कर सकती है, कि तो अब मैं क्या कर्म करने जा रहा हूं, ये भगवान ने हमें समझाया, बच्चे अब तुम अगर मुझे मेरी याद में रखे, मेरी श्रीमत पे कर्म करोगे तो क्या होगा, तुम्हारे जीवन में शांति, पवित्रता भी आएगी, शांति भी आएगी, सच्चा स्नेह, अतिंद्रिय सुख, आनंद की अनुभूति भी होगी, और भविष्य में भी आप क्या बन जाओगे, वर्तमान में तुम्हारा शांति प्यार खुशी वाली दुनिया होगी, उसमें भी शांति प्यार खुशी की दुनिया में जाओगे। कर्मों की खेती, कर्म सत्य है, कर्म का कोई विनाश नहीं होता। तो बच्चों को शुरू से समझ में आ जाए तो झगड़े होंगे क्या? हम एक परमात्मा पिता के बच्चे आपस में भाई भाई, तो झगड़े होंगे? कोई झगड़े का नहीं, ये एजुकेशन की आवश्यकता है स्कूलों में, कॉलेजों में, बचपन से ही। और खुशी क्या चीज है? हंसने को खुशी नहीं कहते हैं। रामायण सीरियल देखा ना आपने, हंसता कौन रहा और मुस्कुराता कौन रहा? रावण हंसता रहा और राम मुस्कुराता। हंसना नहीं, हंसना खुशी नहीं है। एक अंतरराष्ट्रीय परिभाषा क्या है खुशी की? इट इज एन इनर स्टेट ऑफ बीइंग एंड इट कम्स फ्रॉम इनर सेटिस्फेक्शन कंटेंट। ये अंदर की बात है। कब आती है? जब अंदर से आप संतुष्ट होते हो। तो आज खुश क्यों नहीं है दुनिया में लोग? इज एनी वन हैप्पी इन दिस वर्ल्ड? क्या खुश है? पैसे वाले खुश हैं? अमेरिका का राष्ट्रपति खुश है? कोई खुश है इस समय? क्या समझते हो आप? कोई खुश नहीं, खुश क्यों नहीं है? कि खुशी कहां से आती है? प्योरिटी ऑफ माइंड इंटेलेक्ट, मन और बुद्धि पवित्र है तो खुशी आती है। ट्रुथ पीस, अगर मन में शांति है तो है। सत्यता है तो खुशी आती है। निर्भयता है तो खुशी आती है। डर है अंदर, मरने की नहीं देगी, राइट? पावर ऑफ टॉलरेंस है, सहनशीलता है तो खुशी आती है। सहन तो हम कर लेते हैं डर के मारे, हमारी माताएं बहनें भी सहन कर लेती, भाई भी सहन कर लेते हैं, पर अंदर बोलते रहते हैं मेरे को इतना, मैंने इतना इतने इतने दुख सहे हैं, इतने दुख सहे हैं, समा नहीं पाते। इसी कारण से हाई पी होता है, शुगर होती है, डायबिटीज होती है, हार्ट अटैक आता है, घुटने खराब होते हैं, पेट में पेट की खराबी होती है, सिरद होता है। सहनशीलता, पावर ऑफ टॉलरेंस। आज का आदमी गुब्बारे की तरह, सफलता मिल रही है, फूल का कुप्पा होता जा रहा है, एक आदमी सुई लेके आता है, चुभा देता है गुब्बारे में, एकदम छोटा सा हो जाता है। एक आदमी देखो अभी तो थोड़ी देर में इतना खुश है, थोड़ी देर में खुद इतना उदास है। जब तक सहनशीलता नहीं होगी तब तक आदमी सदा खुश नहीं रह सकता, ना खुशी में बहुत खुश, ना बहुत दुख में गमी आएगी, दोनों को सहन करना सीख जाता है। जिसके पास सरल स्वभाव है वो खुश रह सकता है, जो मिला जैसा मिला उसमें खुश है। जो सरल नहीं है ना, डिफिकल्ट नेचर का व्यक्ति, वो खुश नहीं रह सकता है। जो मीठा बोलता है वो खुश रह सकता है। जो जो बड़ी दिल, लार्ज हार्ट में, ये दिल बड़ी नहीं, ये तो फूल जाएगी तो बड़ा हो जाएगा हार्ट, सांस नहीं आएगा। आत्मा रूप ये बड़ी दिल चाहिए, बड़ी दिल माने जिस दिल में दूसरों गलती को समाने की शक्ति हो, उसको वो खुश रह सकता है। एम्पैथी, दया रहम करुणा क्षमा भाव, खुद पे भी दया रहम करना चाहिए, गलती को दया रहम करुणा क्षमा भाव आना चाहिए। और फिर त्याग और संतुष्ट, समय से पहले नहीं, भाग्य से ज्यादा नहीं, किसी के भाग्य से किसी कंपेयर नहीं कर सकते। अब आज के समय में देखो अगर आप तो 95% जब देखो 100% बीमारियां साइकोसोमेटिक हैं, मन से पैदा होती हैं, है ना? ये हमने रिसर्च की बात करा था, मैंने जो रिसर्च दिल्ली में की, यहाँ पर आने के बाद की, दिल्ली में बनाया था इसको, तो DRDO से मिलकर, डॉक्टर कलाम साहब का जो DRDO था उससे मिलकर बनाया, इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने इसको स्पॉन्सर किया, और रिसर्च हमने 2011 में पब्लिश की, माउंट आबू ओपन हार्ट ट्रायल के नाम से, माउंट आबू ओपन हार्ट ट्रायल, सेप्टेम्बर 2011 में पब्लिश की थी। और एक एक अमेरिका में लगभग सारे विश्व में 2 मिलियन रिसर्च पब्लिश होती हैं हर साल, 20 लाख रिसर्च लगभग पब्लिश होती हैं, और इसमें टॉप 20 बनाई जाती हैं, जिनको 20 पहले रिसर्च जो इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश हुई, जिनको सबसे ज़्यादा लोगों ने देखा, डॉक्टर्स ने, रिसर्चर्स पढ़ा, अपनी रिसर्च में डॉक्यूमेंट किया, तो उसको पहली 20 बनाई जाती हैं। तो हमें बताया गया 2013 में बताया गया, जुलाई 2013 में, कि आपकी जो रिसर्च आपने की है ये पहली 20 में से टॉप नंबर 1 है, क्योंकि हमने रिसर्च में पहली बार शो किया कि हमारे हार्ट के ब्लॉकेजेस 100% ब्लॉक में निकल सकते हैं, और निकल दिखाया, हमने रिजल्ट दिखाया कि कैसे ब्लॉक निकलते हैं और हर ब्लॉक के पीछे क्या क्या कारण होते हैं। एंजियोग्राफी देख के हम बता सकते हैं कि आपकी नेचर कैसी, स्वभाव कैसे है। हर ब्लॉक के पीछे आपका सोचने का ढंग है, सोचने का पैटर्न है, उसको आप बदल दो। राजयोग मेडिटेशन से हम यही करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं आपका स्वभाव कैसा है, साइकोलॉजिकल टेस्ट करते हैं, और फिर उनके स्वभाव को बदला जाता है। ये आप स्वभाव इस तरह से बदलें, ये स्वभाव इस तरह से बदलें, स्वभाव इस तरह से, ये ब्लॉक इस कारण से, ये ब्लॉक इस कारण से, स्वभाव बदलो ब्लॉक निकल जाएगा। और रियल में ऐसा ही होता है। डायबिटीज भी हमारे स्वभाव के कारण होती है, ब्लड प्रेशर, जीन सभी माँ बाप से मिलते हैं, पर जीन जागते कब हैं, जागृत कब होते हैं, एक्टिव कब होते हैं, एक्सप्रेस कब होते हैं, जब हमारा वो स्वभाव हमारे अंदर आ जाता है। वो नेगेटिव विचार, नेगेटिव भावना ही उसके लिए धरती है, उस बीज को जागने के लिए, अंकुरित होने के लिए। गलत खान पान उसके लिए खाद है। तो जीन, अगर हम विचार मन को पॉजिटिव रखें, टीम को पॉजिटिव रखें, तो वो जीन भले माँ बाप से मिले हैं तो भी उनसे पेड़ नहीं बनेगा, अर्थात बीमारी आपको होगी नहीं। तो अपनी टीम को पॉजिटिव करना सीख जाए। तो वो टीम माना थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स और मेमोरीज। और मैं बताया कि हर 3 महीने पर हमको इन्फॉर्म करते रहे वो, क्योंकि हर 3 महीने बाद फिर उसको चेक किया जाता है। कि फिर नवंबर 2015 तक मैं 2 साल 4 महीने ये रिसर्च नंबर 1 पे रही। भारत की अपनी अकेली रिसर्च है जो ऐसी नंबर 1 पे इतने लंबा समय रही। और फिर अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने एक स्टेटमेंट निकाला, मेडिटेशन एंड हार्ट डिजीज, एक 2017 में निकाला। उन्होंने बताया कि जो रिसर्च आपने की है इसको, ये इसने बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके, खाली हार्ट अटैक से बचाने के लिए नहीं, खाली ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और कारण जो हार्ट अटैक के होते हैं उन सबसे बचने के लिए, स्मोकिंग एडिक्शन जो होते हैं उनसे बचने के लिए, और इंसुलिन रेजिस्टेंस से बचने के लिए बहुत अच्छी, लोग इसको फॉलो करें। उन्होंने मैं कहा और इस पर बड़ी रिसर्च करो, और अभी तक तो हम 10,900 पेशेंट ले चुके हैं इस प्रोग्राम में, अब तो सिर्फ 508 पेशेंट ही थे इस रिसर्च में, अभी 10,900 पेशेंट ले चुके हैं इस प्रोग्राम। वर्ल्ड की सबसे बड़ी सीरीज है ये, सबसे पूरे विश्व में सबसे बड़ी सीरीज है ये। तो सॉल्यूशन ये है कि आज के जो हेल्थ केयर है वो वन डायमेंशनल है, सिर्फ बॉडी की केयर करते हैं डॉक्टर सब। इतने भी डॉक्टर्स हैं भारत में, विदेशों में, MBBS करो, MD करो, DM करो, जो भी डिग्री आप ले लो, FRCP करो, FRCS, किसी भी देश में चले जाओ, किसी देश में चले जाओ, कितनी फेलोशिप कर लो, सिर्फ बॉडी के बारे पढ़ाते हैं। इलाज भी बॉडी का ही सिखाते हैं, कोई भी कहीं भी आत्मा का इलाज करना सिखाते हैं क्या? मन का इलाज करना सिखाते हैं? डॉक्टर्स को पता ही नहीं मन क्या होता है, आत्मा क्या होती है, क्योंकि सारी बीमारी मन से पैदा होती है। और आत्मा का, आत्मा की एक एनर्जी ही मन है, एक शक्ति ही, सूक्ष्म शक्ति मन है। तो आत्मा के बारे जानना भी बहुत जरूरी है। तो ये जो है WHO की डेफिनेशन बताई ना मैंने आपको, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल, चारों ही हमारी जो है ना उसको, उसका बैलेंस, उसकी हेल्थ होना बहुत जरूरी है। खाली शरीर की हेल्थ नहीं, मन की हेल्थ भी जरूरी है, समाज भी हेल्दी होना चाहिए, और सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना, और हमारा आत्मा भी शक्तिशाली होनी चाहिए, तो उसको कहेंगे हेल्थ। अब देखो ये तो मैंने बताया, फार्मूला बताया ना आपको, आत्मिक शक्ति कैसे बढ़ाएं? आत्मिक शक्ति बढ़ाने की कोई दवाई है क्या? दुनिया में कोई दवाई नहीं है, कोई ऑपरेशन नहीं जिससे आत्मिक शक्ति बढ़ सके। क्या है? सिर्फ एक ही विधि है, एक ही टेक्निक है जिससे आत्मा की शक्ति बढ़ा सकते हो, कोपिंग एबिलिटी बढ़ा सकते हो, वो क्या है? योग या मेडिटेशन। अब योग शब्द क्या है? योग या मेडिटेशन का मतलब क्या है? कनेक्शन, जोड़। किससे जोड़? कनेक्शन विद द ट्रूथ, सत्य से जुड़ना ही योग है। ट्रूथ क्या है, सत्य क्या है? उसकी दो विशेषताएं हैं, सत्य एटर्नल होता है, इमॉर्टल होता है, जन्म मरण से परे होता है। सत्य का जन्म कभी नहीं होता, मरता कभी नहीं। दूसरा, सत्य अनचेंजेबल है, अपरिवर्तनशील है। हजारों साल पहले सत्य वैसा ही था, आज भी वैसा ही, हजारों साल बाद भी वैसा ही होगा। सत्य कभी ना मरता है ना जन्म लेता है, और सत्य कभी परिवर्तन नहीं होता। हमारा सत्य क्या है बताइए? हमने बचपन से अपने आप को इस रूप में देखा, देह के रूप में देखा, अपने माता पिता को देह के रूप में देखा, या रोल के रूप में देखा, ये मेरी मां, ये मेरा बाप, ये डॉक्टर, ये इंजीनियर, ये पैसे वाला गरीब आदमी, इसी रूप में देखा। क्या रोल सत्य है? क्या शरीर सत्य है? तो हम तो इससे जुड़े रहे, इसी को सबको समझा, इसलिए तो हम दुखी हुए, इसलिए तो शांत हुए, इसलिए बीमार हुए, रोगी बने। सत्य क्या है? तो सत्य इंसान का सत्य, और ये मेडिटेशन वर्ड है ना, मेडिटेशन वर्ड कैसा है? मेडिटेशन माना फोकस, टू फोकस, टू कंसंट्रेट। सत्य पे फोकस करो, सत्य पे अपने जीवन को एकाग्र करो, सत्य पे अपनी बुद्धि और मन को एकाग्र करो, इसी को मेडिटेशन कहते हैं। और मेडरी माना हीलिंग, हीलिंग करो, अपनी खुद की हीलिंग खुद करो। डॉक्टर आपको हील नहीं कर सकता है, भगवान भी चाहे तो आपको हील नहीं कर सकता है। भगवान भी चाहे मैं इसको स्वस्थ बना दूं, खुश बना दूं, नहीं कर सकता है। करने वाला कौन है? कौन है? कौन है? स्वयं मैं हूं। डॉक्टर मुझे गाइड कर सकता है, रिश्तेदार मेरी मदद कर सकते हैं, पैसा मेरी मदद कर सकता है। भगवान की श्रीमत पर चलूं, डायरेक्शन में चलूं, तो मैं एक कदम से हजार गुना मेरी मदद मिलेगी। क्यों? तो करना किसे है? मुझे करना पड़ेगा। मेरा स्वास्थ्य, मेरी खुशी मेरे हाथ में है, कोई मुझे खुश नहीं कर सकता है। अगर मैं दुखी रहना चाहूं और कोई मुझे खुश कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो ये इंसान की, ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग शब्द है ना इसकी, ये ह्यूमन बीइंग शब्द इंग्लिश में कहते हैं ना इंसान को, दो शब्दों से बना, ह्यूमन प्लस बीइंग। ह्यूमन शब्द कहां से आया? ह्यूमस से आया, ये लैटिन वर्ड है जिसका लिटरल मीनिंग क्या है? सॉयल, मिट्टी। ये हमारा आउटर सेल्फ है जो बाहर दिखाई देता है ना, बाहर वाला मैं। और बीइंग माना लाइफ फोर्स, अंदर जो शक्ति है ना, जीवनी शक्ति, उसको सोल कहते हैं। ये हमारा इनर सेल्फ है। तो ये आउटर सेल्फ और इनर सेल्फ, सॉयल में क्या, इवन सॉयल और सोल्स में स्पेलिंग में फर्क देख लो, क्या है सॉयल और सोल में क्या फर्क है? बोलिए, आई और यू। तो जब जब आप आउटर सेल्फ कॉन्शियस होते हो तो अंदर आईनेस और माइनस आती है, ईगो और अटैचमेंट आती है, अहंकार आता है, और क्या आता है? मोह पैदा होता है, राइट? और आई से इलनेस, माना सारी बीमारियां आईनेस से ही आती हैं। जब मैं करते हो ना, मैंपन, मेरापन, तो वहीं से सारी बीमारियां आती हैं, मन की, तन की, समाज की और आत्मा की, सारी बीमारी वहीं से पैदा होती है। और यू माना यूनिवर्सल, वसुदेव कुटुंबकम, सारा विश्व मेरा परिवार है। यू से वी बनता है, वी माना वेलनेस। देखिए समझिए, स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट है। आउटर सेल्फ क्या है? आउटर सेल्फ तीन एस्पेक्ट होते हैं, या तो हमारा शरीर बॉडी या रोल। जैसे मैं डॉक्टर हूं, क्या डॉक्टर 24 घंटा डॉक्टर हूं क्या? हॉस्पिटल में 5-6 घंटा 8 घंटा मैं डॉक्टर हूं, घर में आऊं तो पति भी हूं, किसका पिता भी हूं, किसका बेटा भी हूं, किसका भाई भी हूं, किसका दोस्त भी हूं, राइट? कितने रोल बदल गए? 6 रोल तो हो गए, नहीं होगी दिन में। परमानेंट है क्या? बदल रहे हैं ये तो परमानेंट, तो मेरा लेबल तो नहीं लगा हुआ यहां डॉक्टर का लेबल लगाया क्या? लेबल नहीं है, ये तो लेबल है जो समाज से मिले हैं। तो ये मैं नहीं हूं, ये बदल रहे हैं, ये ट्रुथ नहीं है। और मटेरियल, पैसा, जमीन जायदाद सत्य है क्या? ये भी सत्य नहीं है। तो इनसे डर पैदा होता है, अनस्टेबिलिटी पैदा, इनसे डर पैदा होता है। और डर से ही 5 विकार पैदा होते हैं, काम विकार भी डर से पैदा। कोई तो मेरे लिए हो जो मेरे लिए जिए, काम विकार वहां से पैदा होता है। क्रोध भी डर से पैदा होता है, मेरी नहीं सुनता है, मेरी नहीं मानी तो क्रोध। लोभ भी डर से पैदा होता है, और इकट्ठा कर लो। मोह भी डर से पैदा होता है, जो मेरे हैं मेरे आसपास ही रहे। अहंकार भी डर से पैदा होता है। 5 विकार डर से पैदा होते हैं, और इनके 2-2 बच्चे मैंने बताया आपको, आदतें बन जाती हैं। काम विकार से आलस्य अलबेलेपन की आदत पड़ती है, क्रोध से दोष दर्शन बदलने की भावना की आदत पड़ती है, लोभ से शक और अनुमान की आदत पड़ती है, मोह से चिंता और भय की आदत पड़ती है, और ईगो से जल्दबाजी और ईर्ष्या द्वेष की आदत पड़ जाती है। और इसी को हम कहते हैं स्ट्रेस, इसको तनाव कहते हैं। और इससे हमारे अंदर हमारा मूड खराब होता है, और सबसे ज्यादा मूड स्टडी हुए हैं कि हम गलत खाना क्यों खाते हैं। तो पता लगा कि मन के अंदर जैसा मूड होता है ना, वैसा फूड हम खाते हैं। भले आपको डायबिटीज है, पर मन में जो कड़वाहट है ना, तो फिर मीठा खाना पड़ता है। मन की कड़वाहट को शांत करने के लिए मीठा खाने की इच्छा पैदा होती है। डॉक्टर ने मना किया डायबिटीज मीठा मत खाना, फिर भी खा जाते हैं, फिर भी चुपचाप चोरी 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 छिपे भी गुलाब जामुन खा जाएंगे, बर्फी खा जाएंगे। होता नहीं होता? अंदर से ड्राई महसूस करते तो फ्राइड खाते हैं, तला हुआ खाते हैं। अंदर से बोरिंग महसूस करते तो हॉट एंड स्पाइसी खाते हो। डॉक्टर ने मना किया स्पाइसी मत खाना, पेट में अल्सर है, तो भी खा जाएंगे। होता है कि नहीं होता है? क्यों खाते हो? पर मन कंट्रोल में नहीं आता है, वो भावनाओं फिर ऐसी पैदा होती है, उसका फिर कंपनसेशन मुंह से होता है। और ऐसा आदमी जिसके विचार तेज चलते हैं, जो टेंशन में रहते हैं ना, विचार बहुत तेज चलते हैं, तो उनको नींद नहीं आती है। सोने जाएंगे 10 बजे, नींद नहीं आएगी 11, 12, 1, 2 बजे तक। फिर 2 बजे सोएंगे तो 8, सुबह 8 बजे उठेंगे। आज बच्चों में ये बहुत चल रहा है, मोबाइल में लगे रहते हैं। और ऐसा आदमी खाने में खुशी ढूंढता है, अंदर से खुशी नहीं, खाने में खुशी ढूंढता है, इसलिए बहुत खा लेता है। खाने के बाद भी कहता है मन नहीं भरा अभी, फिर और खाता है। होता नहीं होता? खाने में खुशी होती है क्या? नहीं होती है ना। तो ऐसा आदमी देर से सोता, देर से उठता है, तो एक्सरसाइज भी नहीं कर सकता है। जबकि नियम है कि हमें बिना नाश्ता, बिना आधा घंटा सैर किए सुबह, व्यायाम किए, हमको नाश्ता नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। यू हैव टू अर्न योर ब्रेकफास्ट, है ना। आपको शरीर का नियम है कि आधा घंटा कम से कम सैर कर लो, तब नाश्ता करो, कि तो अंदर टाइम ही नहीं हमारे पास सैर करने का। और फिर ऐसा आदमी नींद नींद नहीं आती ढंग से, तो ऐसा आदमी क्या करता है? लोग क्या करते हैं? चाय की प्याली पी के फिर काम करते हैं, कॉफी अपने ऑफिस में कॉफी पी के काम शुरू करते हैं, सिगरेट बीड़ी पीते हैं, शराब पीते हैं, नींद की गोली खाते, नींद नहीं आती। तो ऐसे आदमी सदा बीमार रहते हैं। बी माना डर, मारी माना बने रहना। और इसके बजाय अगर आप इनर सेल्फ कॉन्शियस बन जाओ तो फुल प्रूफ सिक्योरिटी है, ना, फुल प्रूफ सिक्योरिटी है। डर है क्या? आत्मा तो मरती नहीं, अजर अमर अविनाशी है। तो आत्मा जैसे पानी, अगर आग की भट्टी के बाद जो गर्मी अपने आप लगती नहीं लगती, तो मांगनी नहीं पड़ती। जैसे ही आप अपने को बॉडी कॉन्शियस, रोल कॉन्शियस, मटेरियल कॉन्शियस बनते हो, तो अपने आप ही काम विकार पैदा, 5 विकार पैदा होते हैं, उनके बाल बच्चे पैदा होते हैं, आपके अंदर मूड खराब होता है, गलत खाना खाते हो, गलत सैर करते हो, गलत नींद करते हो, नींद नहीं आती, देर से सोते हो, देर से उठते हो, फिर गलत आदतें, एडिक्शंस आते हैं, सिगरेट बीड़ी शराब पीने की आदत पड़ती है, चाय कॉफी पीने की, कोल्ड ड्रिंक पीने की आदत पड़ती है। इसके बजाय अगर आप सोल कॉन्शियस हो, जैसे पानी की झील है ना, ठंडी हवा अपने आप आती है, मांगनी नहीं पड़ती, तो आत्मा के जो गुण है ना, अपने अंदर महसूस होने लगता है कि मैं दे नहीं, ये देखो चलो मैंने अति समझ, ज्ञान ना समझ, समझ सत्य की समझ आ जाती है कि मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा की संतान हूं, मेरा संबंध उसके साथ है, और डी माइंड रामा कर्म सत्य है, तो एबीसीडी की समझ आती है। एबीसीडी समझ आती है तो फिर पवित्रता आती है कि मैं भी आत्मा, ये भी आत्मा, मेरा साथी भी आत्मा, मेरी पत्नी या पति भी आत्मा, बच्चे भी आत्मा, हम सब आपस में भाई भाई हैं। तो ये इसी से ही पवित्रता कहते हैं। शांति माना जो हमारे साथ बीत गया अभी तक, पास को फुलस्टॉप लगा के अपने सत्य में टिके, परम सत्य से कंबाइंड होकर हम काम करते हैं। विचारों की स्पीड 10% रह जाती है, 40 विचार रहते हैं, 10 ही चार ही विचार रह जाते हैं एक मिनट में, सब फालतू विचार आने बंद हो जाते हैं, ना पास के ना भविष्य के, वर्तमान में जो सोचते हैं वो हो जाता है। 40 विचार रहते हैं, कुछ सोचते बहुत सोच रहे थे, काम कुछ नहीं हो पा रहा था। शांति, इससे आत्मा का धर्म क्या है? शांति, वर्तमान में उसी विचार में रहकर काम करना, इसे शांति कहते हैं। फिर प्यार, जब परमात्मा से रहकर काम करते हैं, साथ में रहकर कार्य करते हैं, तो देखते हैं परमात्मा सबको एक्सेप्ट करता है, सबकी पालना करता है, डाकू चोर की भी करता है, आतंकवादी की भी करता है, उसको भी हवा पानी सब कुछ बुद्धि भी देता है, वो जानता है कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा सब, इसलिए सब डाकू चोर भी उसके पास जाते हैं, आतंकवादी भी उसके पास जाते हैं, इसलिए उसको कहते हैं तू प्यार का सागर है। तो प्यार की परिभाषा क्या है? प्यार माना हर व्यक्ति, कोई कैसा भी है, आपके घर में है, बाहर है, साथी है, ऑफिस में काम करता है, हर आत्मा का अपना अपना रोल है, हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है, आप उसका जैसा भी रोल है उसको एक्सेप्ट करो, उसकी बराबर पालना करो। गाली देने वाला और महिमा करने वाला दोनों बराबर, उसकी बराबर पालना करो। इसको कहते स्नेह, इसको बोलते प्यार। एक माँ के 3 बच्चे हैं, एक सांवले रंग का हुआ, एक गोरे रंग का हुआ, एक पैरालाइज है, तो माँ क्या करेगी, क्या करेगी बोलो? यस, गोरे की पालना करेगी, काले की नहीं करेगी, पैरालाइज वाले की नहीं करेगी, क्या करेगी बोलो? बल्कि पैरालाइज वाले की ज्यादा करेगी। इसे कहते हैं मां का प्यार क्या है, सबसे ऊंचा प्यार है ना। तो हमें भी ऐसा ही सबकी बराबर पालना करना, बिना किसी शर्त के दिल से सम्मान के साथ पालना करना, ऐसा प्यार हर एक आत्मा के लिए विश्व में हो, इसे कहते हैं अनकंडीशनल, डिग्निफाइड, रेस्पेक्टफुल एक्सेप्टेंस एंड केयर फॉर ईच एंड एवरी ह्यूमन बींग ऑन द प्लेनेट। विश्व में हर आत्मा के साथ दिल से, सम्मान से, बिना किसी शर्त के उसको, उसके रोल को स्वीकार करो और उसकी बराबर पालना करो। ऐसा प्यार आपको भगवान से मिला देता है। जिसके दिल में सबसे प्रति प्यार है ऐसा, वो भगवान से मिलने का अधिकारी है। जिसमें किसके प्रति पार्शियलिटी है, ये गरीब है, ये अमीर है, ये भला है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये मेरी जाति का है, दूसरी जाति का, नीची जाति का है, उसको भगवान से मिलने का अधिकार नहीं है। ऐसी आत्मा जो विश्व में हर एक आत्मा को स्वीकार कर लेते हैं, उसको परमात्मा से मिलने का जो सुख प्राप्त होता है ना, तीन्द्रिय सुख कहते हैं उसको, सुपर सेंस जो है, वो सुख की प्राप्ति होती है। आत्मा का परमात्मा से मिलने का सुख, एक इंद्रियों का सुख हमें बीमार करता है, देखने का सुख, पढ़ने का सुख, खाने का सुख, सूंघने का सुख, बोलने का सुख, सुनने का सुख, छूने का सुख, इससे बीमारियां पैदा होती हैं, और अतीन्द्रिय सुख से बीमारियां ठीक होती हैं। ऐसा सुख, इसलिए हम जो हम सब भगवान के पीछे क्यों जाते हैं, क्यों जाते हो जंगल में, क्यों गए तपस्या, क्यों की, इंद्रियों का सुख त्यागा, उस सुख के पीछे गए, वो थोड़ा देर के लिए उससे प्राप्ति, उससे मिलने का सुख हो जाए, पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। ये सुख हमारा अंदर का सुख है जो हम सबके पास है, कहां खो गए, ये देह अभिमान में खो गए, काम क्रोध लोभ में का के वश हो गए, इसलिए हम सुख को भूल गए, इसलिए आज बीमार हो गए, सभी रोगी बन गए, मन के भी रोगी, तन के भी रोगी बन गए, बने कि नहीं बने, सब बीमार हो गए, दुखी हो गए, सब कुछ है, साधन है, फिर भी दुखी है। आज से 50 साल पहले मुझे याद है, हमारे पास कुछ भी नहीं थे, साधन भी नहीं थे, तो भी खुश रहते थे, गरीबी में खुश था, खुश थे, आज अमीर में भी दुखी है, तो ये खुश, इसमें क्या, इच्छाएं कम होती जाती है, इच्छा मात्र में विद्या की स्थिति आ जाती है, संतुष्ट रहने लगते हैं। तो जब आत्मा परमात्मा के लंब में लीन हो जाती है, लवलीन कहते हैं, लवलीन स्थिति, उसे आनंद कहते हैं। आनंद माना बंधन, अन्न माना मुक्त, बंधन मुक्त स्थिति, आत्मा देव और देव की दुनिया से बंधन से परे हो गई, परमात्मा के प्यार में लवलीन हो गई, आनंद, इससे सारी बीमारियां हमारी खत्म हो जाती है। और जब ऐसा आनंद आता, शक्तियां अपने अंदर आती है, तब तब सत्य को प्रकट शक्ति, जिसे कहते हैं विजडम कहते ना, विवेक, तीसरी आंख कहते ना, तीसरी आंख खुल जाती है। जिसने एक बार आनंद को टेस्ट कर लिया, अतीन्द्रिय सुख को टेस्ट कर लिया, उसका स्वाद आ गया, उसके दुनिया बेन, दुनिया का कोई चीज को खींच नहीं सकती, उसको सही निर्णय करने की शक्ति, उसकी बुद्धि दिव्य हो जाती है, वो विस्तार को सार में ला सकता है, समेटने की शक्ति आ जाती है, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, आठों शक्तियां आपके अंदर आ जाती हैं। और जब सातों से भरपूर करके व्यवहार करते हैं तो क्या होता है, आपके अंदर दैवी गुण आ जाते हैं, दिव्य गुण आने लगते हैं, सत्यता, निर्भयता, नम्रता, सहनशीलता, एकाग्रता, दृढ़ता, संतुष्टता, हर्षित मुक्ता, दृढ़ता आपके अंदर आ जाते हैं। 36 दैवी गुण होते हैं, देवताओं गुण कही जाते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, आपका जीवन ऐसा बन कर्मों में दिखाई देने लगते हैं। और ऐसा आदमी स्ट्रेस फ्री रहता है, हमेशा हर्षित रहता है, मुस्कुराता रहता है, इसको सदा खुश है, इसको खाने में खुशी नहीं ढूंढता, ये हेल्दी फूड खाता है, फल खाएगा, सलाद खाएगा, सब्जी खाएगा, अंकुरित खाएगा, रोटी सब्जी खाएगा, दही खाएगा, दूध पिएगा, स्वस्थ शुद्ध सात्विक भोजन खाएगा, ऐसे आदमी को नींद बहुत अच्छी आती है। हम लोग रात को 9-10 बजे सो जाते हैं, सुबह 3:30 उठ जाते हैं, कभी मिस नहीं करते हैं, सुबह ब्रह्ममुहूर्त में मेडिटेशन करते हैं, नहा धो के तैयार होकर फिर हम सैर भी कर लेते हैं, और फिर मुरली में भी सुनने 7 से 8 मुरली सुनते हैं, टाइम पर नाश्ता भी कर लेते हैं, और अस्पताल में भी सारा दिन काम करते हैं, सोने के पहले एक लेटर लिख के भगवान को सारा बता देते हैं कि आज हमसे ये हुआ, गलती हुई, क्या हुआ, है ना। तो ये हमारी दिनचर्या बहुत, नींद बहुत अच्छी, एक सेकंड में नींद आती है, विचार ही ज्यादा नहीं चलते, और हमें ना चाय चाहिए, ना कॉफी चाहिए, ना कोल्ड ड्रिंक चाहिए, ना शराब चाहिए, ना बीड़ी सी चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, और हम हेल्दी और हैप्पी रहते हैं सदा। इनक्योरेबल का मतलब क्या, इनक्योरेबल, इनक्योरेबल का मतलब ये नहीं कि चीज असाध्य है, इनक्योरेबल ना, इट इज क्योरेबल इफ यू गो इन, इसे क्योर कर सकते हो आप, अंदर जाओ आत्मिक शक्ति को जागृत करो, परमात्मा से जुड़ के उसको हील करो, कैंसर भी आप ठीक कर लेते हो, अपने ब्लॉकेज भी खोल लेते हो, डायबिटीज भी ठीक कर लेते हो, ऐसे ऐसी बीमारियां मैंने देखी पिछले 27-28 साल में जो लाइलाज थी ठीक हो गए, है ना। तो ये एक बहुत सुंदर बात है, आपकी थोड़ी सी सेल्स हैं जो बदलती नहीं है, आत्मा नहीं बदलती, थोड़ी सेल्स, मेमोरी सेल नहीं बदलती, बाकी 99.8% सेल्स बदल रहे हैं, हर 3 महीने से 1 साल में बदल जाते, 2 साल में बदल जाते हैं, आपके मन के आधार पे। तो हेल्दी माना हील दाई सेल्फ, माना सारे विश्व में एक ही व्यक्ति जो आपको हील कर सकता है, वो कौन है, सिर्फ स्वयं आप हो। और हेल्दी माना स्वस्थ, स्व माने आत्मा, अस्त माना स्थित, अगर आप आत्मिक स्थिति में स्थित हैं तो आप स्वस्थ हैं। और मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, परमात्मा हमें ज्ञान देता है, सत्य का ज्ञान देता है, सत्य की समझ देता है, सत्यम शिवम सुंदरम, परमात्मा के बारे में, मन के बारे में, शरीर के बारे में, और हम अंदर जो घड़ी है, एक हमारे अंदर घड़ी लगी है, बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं उसको, उसमें सोने का समय है, उसमें उठने का समय भी है, ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन करने का समय भी है, प्लानिंग करने का समय भी है, सैर करने का समय भी है, नाश्ता करने का समय भी है, हर चीज का समय है उसमें, उस समय आप करें, जैसे नाश्ता 8 से 9 के बीच में, लंच 1 से 2 के बीच में, डिनर शाम को 6 से 7 के बीच में, तो आपकी हेल्थ कैसे होगी, मन भी खुश रहेगा, हेल्दी भी, क्योंकि वो हार्मोन से कनेक्टेड है, आपके अंदर के जो हार्मोन निकलते हैं ना उससे कनेक्टेड है, वो आप सही ढंग से करें तो आपके अंदर बहुत सुंदर आपकी हेल्थ रहती है। आत्मा ऐसे 2.5 इंच अंदर, 3 इंच नीचे, वो आप सुन चुके होंगे, आंखों से देख नहीं सकते, आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां, मन, बुद्धि, संस्कार, और आत्मा मतलब मन की 4 एस्पेक्ट है, टीम, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स और मेमोरीज। ट्रुथ से, जितना सत्य की समझ आपके अंदर ABCD है, उतना आपके विचार पॉजिटिव होंगे, टीम पॉजिटिव हो जाएगी, टी माना थॉट्स, ई माना इमोशंस, ए फॉर एटीट्यूड्स एंड एम फॉर मेमोरीज, टीम पॉजिटिव हो जाए, अपने आप ही पॉजिटिव हो जाएगी। और फॉल्स, जितना ईगो में रहोगे, देह अभिमान में रहोगे, तो उतना नेगेटिव टीम बनेंगी, अपने आप ही विचार भावना नेगेटिव बन जाएंगे। तो ये छोड़ देता हूं मैं, टाइम नहीं है इसीलिए। तो ये हमने EEG किया था लोगों का ना, EEG नहीं, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी एक टेस्ट होता है। हमारे अंदर एक 2 सिस्टम है, एक तो स्ट्रेस रिस्पॉन्स का सिस्टम है, एक रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स का सिस्टम है। ये पेशेंट्स पे एक्सपेरिमेंट किए गए, तो हमने देखा जब पेशेंट हमारे पास आए थे पहले दिन, तो इनका स्ट्रेस रिस्पॉन्स बहुत फास्ट था, जल्दी चिंता गुस्से के रिएक्शन बहुत ज्यादा थी, वो सिंपैथेटिक सिस्टम कहते हैं उसको। और रिलैक्सेशन सिस्टम जो होता है ना, शांति, प्यार, खुशी वाला सिस्टम, बहुत वीक था। 7 दिन जब उनको मेडिटेशन कराया गया तो देखा 7वें दिन का जो है स्ट्रेस रिस्पॉन्स कम हो गया था, स्लो हो गया था, जल्दी चिंता गुस्सा कम हो गया था, और शांति, प्यार, खुशी की एनर्जी बढ़ गई थी। 1 साल पे देखो दोनों का बैलेंस हो गया था। अर्थात जीवन में प्रॉब्लम्स तो आएंगी, समस्याएं तो आएंगी, तूफान तो आएंगे, किंतु उसको रिलैक्स माइंड से फेस करो। राजयोग का मेडिटेशन आपको ये सिखाता है कि प्रैक्टिकल में आपका जीवन कैसे बदल जाता है और आपका जीवन बैलेंस हो जाता है। समस्याएं आती रहेंगी, किंतु आप उनको फेस करके अनुभव की अथॉरिटी बनके आगे बढ़ते जाओगे। देखो हमने हार्मोन्स भी किए थे, स्ट्रेस हार्मोन्स किए थे, हैप्पी हार्मोन्स भी किए थे, तो सातवें दिन ही टेंशन वाले हार्मोन्स कम हो जाते हैं, एड्रेनल लेवल नॉरएड्रेनल लेवल्स कम और आगे कम होते जाते हैं। और फिर हमने माइंड क्या है, माइंड को पता है टीम, ये हमारा सूक्ष्म शरीर क्या है, हमारा मन ही है, मन ही हमारा सूक्ष्म शरीर है, टीम हमारी। तो इस जो बॉडी से एक स्थूल शरीर है, एक मन सारे शरीर में फैला हुआ है, और हमारी टीम पॉजिटिव होते तो मन हमारा सूक्ष्म शरीर लाइट का बन जाता है। लाइट मीन्स उसमें ज्ञान की लाइट, पवित्रता की लाइट, शांति की लाइट, प्रेम की, खुशी, आनंद की लाइट भर जाती है। और सूक्ष्म शरीर, हम सूक्ष्म शरीर के साथ हम सूक्ष्म वतन में जा सकते हैं, हम ट्रेवल कर सकते हैं, राइट। ये हमारा ऑरा भी इसे कहते हैं, और बुद्धि जज है, संस्कार हमारी आदतें हैं। और ये हमने इंसुलिन सेंसिटिव भी करके देखा, बस मैं पूरा कर रहा हूँ, इंसुलिन सेंसिटिव भी करके देखा कि हमारी जो डायबिटीज के मरीज जो होते हैं ना, उनकी इंसुलिन काम नहीं करती है, और जब हम राजयोग करते हैं तो हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन कम हो जाता है और हमारी इंसुलिन इफेक्टिव होने लगती है, अपनी डायबिटीज अपने आप ठीक हो जाती है, राइट। तो ये इस तरह से हमने देखा। और ये सात आत्मा की एनर्जी है, और सातों एनर्जी आत्मा की मन के माध्यम से शरीर में जाती है। शरीर की हर कोशिका को सातों एनर्जी आवश्यक है, किंतु एक एक एनर्जी विशेष है एक एक अंग के लिए। तो आत्मा की बैटरी चार्ज हो, टीम पॉजिटिव हो, तो हमारे शरीर के अंग स्वस्थ होते जाते हैं, हेल्दी होते जाते हैं। और अगर सुबह 4 से 5 आधा घंटा हम आनंद की स्थिति में आ जाएं, रिसर्च हुई इस पे, तो हमारे आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाती है और पूरे हार्मोन्स का बैलेंस पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स हार्मनी में निकल जाते हैं। इसी को अमृत कहते हैं, ये हार्मोन्स अमृत के रूप में निकलते हैं, और इससे हमारे अगले 24 घंटे में सारी मन और तन की बीमारी कम हो जाती है। इसलिए कहता है इस समय जो सोता है उसका भाग्य भी सो जाता है। आज सभी सोते हैं आजकल इस समय, है ना, बहुत थोड़े से लोग हैं जो थोड़े से सुबह सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा की याद में बैठते हैं, आनंद की स्थिति का अनुभव करते हैं। और फिर अगर आप 8 बजे चुप रहो तो उठते ही आपकी टीम विचार चलने लगते हैं, भावनाएं पैदा होती हैं, तो आपकी एड्रिनल ग्लैंड से कॉर्टिसोल निकलता है, हमका स्ट्रेस हार्मोन निकलता है। अगर आप सुबह उठते ही नेगेटिव विचार नेगेटिव भावनाएं लाओगे, अखबार टीवी मोबाइल देखते हो, तो नेगेटिव टीम पैदा होती है और उससे हमारे कॉर्टिसोल ज्यादा निकल जाता है। फिर सारा दिन जल्दीबाजी, चिंता, गुस्सा, चिड़चिड़ापन होता रहता है, काम कुछ होता नहीं। आप 8 बजे चुप रहो, टीम पॉजिटिव रखो, हम उठते ही परमात्मा के महावाक्य पढ़, हम मेडिटेशन करते हैं, आनंद की स्थिति का अनुभव करके मुरली पढ़ लेते हैं, और 7 से 8 में मुरली पढ़ते हैं, क्योंकि 8 बजे तक वो हार्मोन निकलते हैं। तो उससे क्या होता है, सारा सिस्टम आपका सेट हो जाता है, वो हमारे अंदर शांति प्यार, इतना बैलेंस में हार्मोन निकलता है, सारा दिन शांति प्यार खुशी से काम होता है, जरा भी जल्दबाजी चिंता नहीं होती, चिड़चिड़ापन नहीं आता है, एफिशिएंसी 10 गुना बढ़ जाती है। और फिर ये एनर्जी जो है, जब आप मन को पॉजिटिव कर लेते हो तो एनर्जी बॉडी में आ जाती है। और आप शुद्ध सात्विक भोजन खाओ, शुद्ध सात्विक सैर करो, नींद करो प्रॉपर समय पर, और प्रॉपर अगर दवाई खा रही दवाई भी प्रॉपर ले लो, तो क्या होता है, एनर्जी आपकी बॉडी के आसपास इकट्ठी हो जाती है। इसी को ऑरा कहते हैं, आवा मंडल कहते हैं, प्रभा मंडल कहते हैं। ये आपका शील्ड बन जाता है, कवच बन जाता है, जिससे कि बाहर के कीटाणु, बाहर की प्रॉब्लम्स, लोगों की बददुआएं आपको असर नहीं करें। ये आपकी हीलिंग एनर्जी बन जाती है, जो 24 घंटे आपको हील करती रहती है। तो इस तरह से हमने रिसर्च की, हमने देखा कि जल्दबाजी, चिंता, गुस्सा भी खत्म हो जाता है। ये भी मैं देखा, ईजी हमने किया लोगों का। देखो जब शुरू में आए तो बीटा रिदम डोमिनेंट थी उनकी, ये है अल्फा रिदम को शांति के रिदम कहते हैं, और बीटा रिदम थीटा को हम प्यार के रिदम कहते हैं, और डेल्टा रिदम को शांति और सॉरी खुशी और आनंद के रिदम कहते हैं। एक हफ्ते में तो कितना परिवर्तन हो गया, अल्फा रिदम बढ़ गई, बीटा कम हो गई, थीटा बढ़ गई, डेल्टा बढ़ गई, और भी आंखें खोले खोले। और देखो आंख खोल के अच्छा मेडिटेशन होता है, क्योंकि ये चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस है, मैं देह नहीं मैं आत्मा हूं, चलते फिरते अभ्यास करना है। और ये देखो अल्फा बढ़ती चली गई, बीटा कम होती चली गई, थीटा भी एक हफ्ते में बढ़ गई, डेल्टा भी एक हफ्ते में बढ़ गई। सिर्फ एक हफ्ते का प्रॉपर मेडिटेशन करते आगे बढ़ते रहो, तो आपकी स्थिति चलते फिरते उठते बैठते खाते, हमारी दादी जानकी थी ना जो, उनकी चलते फिरते 2 या 3 फ्रीक्वेंसी होती थी जो गहरी नींद में होती है, तो ये स्थिति हमारी बन जाती है। तो ये हमने कुछ लोगों के जो एंजियोग्राफी में दिखा देता हूं, 2 लोगों की 80% ब्लॉक था, देखिए खुल गया, ये राजयोग मेडिटेशन से खुला, स्वभाव बदला, इस ब्लॉक जिस कारण स्वभाव से था वो स्वभाव बदला तो ब्लॉक निकल गया, देखो इतना लंबा ब्लॉक था खुल गया, जिस स्वभाव में कारण था वो ठीक हो गया, 100% ब्लॉक भी खुल गया, देखा 100% ब्लॉक भी खुल गया, देखो मल्टीपल सारे ब्लॉक खुल गए, 80 और 90% ब्लॉक खुल गया। तो और इस पेशेंट को 2 बार हार्ट अटैक आया, हार्ट की पंपिंग 60% होती है, 30% रह गई, और दोबारा किया हमने तो देखो कितनी हो गई, 45%, नया हार्ट बन गया, हार्ट की दीवारें नई बन गई। एक और पेशेंट उसके 80% ब्लॉक खुल गया, देखो इसके हार्ट की पंप 20% ही रह गई, हार्ट बड़ा हो गया था बहुत, सांस फूलना शुरू हो गया, और देखो दोबारा तो दोबारा किया तो 50% हो गया, दीवारें नई बन गई। एक और देखो 100% ब्लॉक खुल गया है ना। कंट्रोल रूम में ब्लॉक बढ़ गए क्योंकि किसी भी डाइट खाने से, कोई भी सैर करने से, कुछ भी कर लो आप, लौकी का रस पी लो, अर्जुन की छाल का रस पी लो, कुछ भी पी लो, ब्लॉक निकलेगा नहीं। प्राणायाम कर लो, ब्लॉक निकलेगा नहीं, क्योंकि ब्लॉक का कारण हमारे मन के विचार हैं। जब तक मन के विचारों को नहीं बदलोगे तब तक ब्लॉक निकल नहीं सकता। तो ये देखिए एक पेशेंट का और एंजियोग्राम, 100% ब्लॉक है, दोबारा किया तो देखो खुल गया। तो ऐसे प्रोग्राम हम करते हैं, 50 से 60 पेशेंट्स को बुलाते हैं ग्रुप में, साथ में उनकी वाइफ को या हस्बैंड को जरूर बुलाते हैं, क्योंकि बीमारी की जड़ आपस में ही होते हैं। जब तक दोनों को सुधरेंगे नहीं तब तक बीमारी खत्म नहीं होती है ना, जरूरी है दोनों को बदलना ना। तो उनको हम बदलते हैं, उनको पढ़ाया जाता है, उनका भोजन शुद्ध सात्विक भोजन दिया जाता है, सब इकट्ठा खाते हैं, शेयर करते हैं, प्रॉपर नींद करते हैं, मेडिटेशन कराते हैं, ग्रुप सपोर्ट सेशंस होते हैं, अपने मन की बातें शेयर करते हैं, पिकनिक भी होता है, और पांचवें दिन तो आधा घंटा एक घंटा शेयर दौड़ डांस कर लेते हैं सभी लोग जो 50 मीटर चल नहीं पाते हैं। तो ये प्रोग्राम हमने बच्चों में स्कूलों में भी दिया था, कोविड में बंद हो गया था, दोबारा शुरू करेंगे। और फिर हमने अभी तक लगभग 10,900 पेशेंट्स के अंदर ये किया है, और 186 ग्रुप अभी तक हो चुके हैं, 186 ग्रुप हुए हैं अभी तक। और हमने दोबारा से एंजियोग्राफी करा के देखा है, और देश विदेश में सब जगह फैल चुका है। ब्रह्मा कुमारी फेमस है जिसके लिए कि हार्ट की बीमारी, डायबिटीज बिना ऑपरेशन के, बिना दवाइयों के भी ठीक हो जाती है। तो हमारा टेक होम मैसेज क्या है, स्पिरिचुअल केयर, पहली चीज बी नेचुरल, जो भी हम काम करें अपने को आत्मा समझ के परमात्मा की याद में करें, और रोल कॉन्शियस ना बने, बॉडी कॉन्शियस ना बने, और बार बार अपने को रिमाइंड करें मैं कौन हूं, मैं सत्य की समझ स्वरूप की आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं, शांत स्वरूप आत्मा हूं, प्रेम स्वरूप आत्मा, सुख स्वरूप आत्मा हूं, आनंद स्वरूप आत्मा हूं, शक्ति स्वरूप आत्मा हूं। और फिर इसके लिए 4 बजे उठ जाएं, आधा घंटा आनंद की स्थिति का अनुभव करें, तो आपके अंदर ये हार्मोन्स बैलेंस में निकलेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड से। और 8 बजे तक चुप रहें, मुरली परमात्मा के मावक या मुरली सुने, तो आपके अंदर हार्मोन्स एड्रेनल ग्लैंड के हार्मोन कॉर्टिसोल बैलेंस में निकलेगा। और फिजिकल केयर, ईट नेचुरल, शुद्ध सात्विक भोजन खाओ, समय पर खाओ, प्यार से खाओ, परमात्मा की याद में खाओ, अच्छे से चबा के खाओ। सुबह आधा घंटा कम से कम सैर कर लें नाश्ता करने के पहले, सूर्य उदय के बाद, पेट साफ करने के बाद 10 बजे सो जाएं, 4 बजे उठ जाएं, प्रॉपर नींद करो, और प्रॉपर यूज ऑफ मेडिसिन, अगर मेडिसिन भी समय पर खाएंगे तो धीरे धीरे दवाएं छूट जाएंगी। और हमने देखा सबकी दवाएं छूट जाती हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट की सब दवाएं छूट जाती हैं। ओम शांति। उनको अगर आना है इस प्रोग्राम में, चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आ सकते हैं, तो उसमें हम बुलाएंगे। ठीक है, युगरतन भाई हैं जी, हर साल होते हैं प्रोग्राम, वो फिर आपको समय बता दिया जाएगा ना। भले उनको सबको ना दो, कुछ लोगों को दे दो, जिनको आवश्यकता उनको दे दो, सबको देने की जरूरत नहीं। चलिए 1 मिनट साइलेंस में सीधे बैठेंगे, एक मिनट मेडिटेशन करा दो, रामनाथ भाई का मैं टाइम दे रहा हूं। सब सीधे होकर बैठे, व्हाइट लाइट रखो, लाल नहीं करो, सब सीधे होकर बैठ जाएं। इसको जो मैं बात कर रहा हूं उसको अंदर रिवाइज भी करना, रियलाइज भी, सच्चे दिल से महसूस करना, मैं स्थूल देह नहीं, इस स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा मस्तक के मध्य, 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं का पुंज, परम धाम निवासी, अति सूक्ष्म, परम सत्य, परम चैतन्य, 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं के पावर हाउस, परमपिता परमात्मा शिव से सर्व संबंधों की महीन सार वाली याद से कंबाइन हो। परमात्मा ही मेरा संसार है, तो उस परमात्मा पावर हाउस से कंबाइन हो जाओ, सर्व संबंधों की महीन सार वाली याद से कंबाइन हो जाओ। मुझे आत्मा की बैटरी चार्ज होती है, उस आत्मा की बैटरी चार्ज होने से मन के विचार भावनाओं के माध्यम से होती हुई सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जाएं मुझे आत्मा से मस्तिष्क की 100 अरब कोशिकाओं को, आंख नाक कान मुख 5 कर्म इंद्रियों को, और शरीर की सभी कोशिकाओं को, सभी अंगों को पोषित कर रही है। मेरे शरीर की हर कोशिका में शांति, प्यार, खुशी, आनंद और सर्व शक्तियां, मैं आत्मा उसको भरपूर कर रही हूं। मेरा हर अंग स्वस्थ होता जा रहा है। ये प्रैक्टिस आधे घंटे में 10 सेकंड के लिए भी रिवाइज कर लें, 15-20 सेकंड भी रिवाइज करेंगे, देखेंगे आपकी जो भी मन और तन की समस्याएं हैं वो सब खत्म होती जाएंगी। ओम शांति।